आगे सबक देखिए भाई। قال ووقف المشاع جائز عند ابي يوسف رحمه الله تعالى لان القسمه من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز لان اصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به। भाई गुज़श्ता सबक में हमने वक्फ के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बतलाया था कि वक्फ इसे कहते हैं कि कोई शख्स अपना मकान है या बाग है या कोई खेत है या कोई दुकान वगैरह उसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देता है कि इसकी आमदनी फुकरा और मसाकीन पर खर्च की जाए, और ये सदका जारिया है। जब तक वो चीज मौजूद रहेगी तो उस वक्फ करने वाले को उसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। और आपने ये भी पढ़ा कि एक जायदाद को वक्फ करने के बाद उसमें किसी किस्म का तसर्रुफ नहीं किया जा सकता, उसके अंदर रुजू नहीं हो सकता, उसे बेचा नहीं जा सकता और उसे हिबा नहीं किया जा सकता। नीज ये जो वक्फ है इसको शर्त के साथ मुअल्लक करना भी सही नहीं है। मसलन कोई शख्स कहता है कि अगर इस सफर से मैं खैरियत से वापस आ गया तो मेरी तरफ से मेरी ये जमीन वक्फ है, तो ये तो वक्फ को शर्त के साथ मुअल्लक कर रहा है और वक्फ को शर्त के साथ मुअल्लक करना सही नहीं। हां अलबत्ता खुद वक्फ में कोई शर्त लगाना ये जायज है। मसलन कोई शख्स अपना बाग वक्फ करता है लेकिन यह शर्त लगाता है कि जब तक मैं जिंदा हूं इसकी सारी आमदनी मैं इस्तेमाल करता रहूंगा और मेरे मरने के बाद इसकी आमदनी फुकारा पर खर्च की जाए, तो इस तरह वक्फ के अंदर उसकी सारी आमदनी की या बाज़ आमदनी की शर्त लगाना अपने लिए या अपनी औलाद वगैरह के लिए यह जायज है भाई। और मैंने बतलाया था कि वक्फ के लिए जरूरी है कि वक्फ करने वाला आजाद आकिल बालिग हो। अलबत्ता इसमें इस्लाम की शर्त नहीं है, अगर जिम्मी भी कोई जमीन या जायदाद वक्फ करता है तो वो वक्फ हो जाएगी भाई। और फिर मैंने आपको बतलाया था कि यहां पर इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नजदीक वक्फ लाजिम नहीं होता, वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता, जबकि साहिबैन के नजदीक वक्फ जो है लाजिम हो जाता है और वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। और फिर बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि जो इमाम साहब का साहिबैन के साथ वक्फ के मामले में इख्तिलाफ है ये जवाज और अदम जवाज का इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नजदीक वक्फ जायज ही नहीं जबकि साहिबैन के नजदीक वक्फ जायज है। लेकिन साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि सही कौल यह है कि ये जो इमाम साहब का साहिबैन से इख्तिलाफ है ये जवाज या अदम जवाज का नहीं बल्कि लुजूम और अदम लुजूम का है। इमाम साहब के नजदीक किसी चीज को वक्फ किया जाए तो वो वक्फ लाजिम नहीं होता जबकि साहिबैन के नजदीक वक्फ लाजिम हो जाता है। और फिर साहिब कुदूरी ने आपको बतलाया कि इमाम साहब के नजदीक वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से खत्म नहीं होती मगर सिर्फ दो सूरतों में, एक तो यह कि हाकिम उसका फैसला कर दे और दूसरी सूरत यह है कि वाकिफ उसको अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे, तो फिर वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाएगी। मसलन एक शख्स ने अपना बाग वक्फ किया था और किसी को निगरान बनाया था, बाद में इसमें वो रुजू करता है और उस निगरान से कहता है कि ये बाग अब मेरे हवाले कर दो, मैंने रुजू कर लिया है, लेकिन निगरान उसे काजी के पास ले गया और काजी ने इस वक्फ के लाजिम होने का फैसला कर दिया कि ये वक्फ तुम्हारी मिल्कियत से निकल चुका है, यह लाजिम हो चुका है, लिहाजा अब तुम इसमें रुजू नहीं कर सकते। तो काजी जब फैसला कर देगा तो वक्फ जो है वो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा। या इसी तरह वाकिफ अगर वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक करे तो इस सूरत में भी वक्फ उसकी मिल्कियत से निकल जाता है। साहिब कुदूरी ने यह जिक्र किया लेकिन मैंने आपको बतलाया कि वाकिफ अगर वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक करे तो क्या इमाम साहब के नजदीक उस वाकिफ की मिल्कियत से वो ये वक्फ निकलेगा या नहीं, तो इसमें फुकहा का इख्तिलाफ है। बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि वाकिफ जब वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे तो इस सूरत में इमाम साहब के नजदीक भी ये वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है जैसा साहिब कुदूरी ने जिक्र किया। लेकिन दीगर फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, वाकिफ जो है वक्फ को अपनी मौत के साथ भी मुअल्लक कर दे फिर भी ये उसकी मिल्कियत से नहीं निकलता। हां अलबत्ता ये लाजिम हो जाता है, ये वसीयत के दर्जे में हो जाता है, जैसे वसीयत लाजिम होती है और सुलुस के अंदर नाफिज होती है, इसी तरह ये वक्फ भी लाजिम हो जाता है, अलबत्ता ये वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलेगा। मालूम है इमाम साहब के नजदीक सिर्फ एक सूरत में ये वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकलता है, जब हाकिम उसका फैसला कर दे। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ जुबान से कहने से ही वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, और मैंने बतलाया था इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल पर ही फतवा है भाई। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से उस वक्त निकलेगा जब वाकिफ उसको किसी मुतवल्ली के कब्जे में दे देगा, क्योंकि यहां कब्जा जरूरी है। जैसे हिबा और सदका के अंदर कब्जा जरूरी होता है, फिर ही हिबा और सदका ताम होता है, इसी तरह वक्फ के अंदर भी कब्जा जरूरी है। तो जब वाकिफ किसी को निगरान बना दे और उसके कब्जे में यह जमीन या जायदाद दे देगा, तो अब जो है वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाएगी भाई। और साहिब हिदाया ने बतलाया कि अरबी जुबान में वक्फ का माना है रोकना, वक्फ का माना है रोकना, और इमाम साहब के नजदीक वक्फ इसे कहते हैं कि किसी मुअय्यन चीज को वाकिफ की मिल्कियत पर रोकना और उसके मनाफे को सदका कर देना। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि शरीयत के अंदर वक्फ इसे कहते हैं कि किसी मुअय्यन चीज को रोकना अल्लाह की मिल्कियत का हुक्म लगाकर कि अल्लाह ताला इसके मालिक हो चुके हैं, इसको वक्फ कहते हैं। और साहिब हिदाया ने बतलाया कि वक्फ का लफ्ज दोनों को शामिल है, क्योंकि वक्फ का माना है रोकना, और इमाम साहिब भी वक्फ का माना हब्सुल ऐन के साथ कर रहे हैं, और साहिबैन भी वक्फ का माना हब्सुल ऐन के साथ कर रहे हैं। तो लिहाजा वक्फ का लफ्ज दोनों कौलों को शामिल है, लफ्ज के जरिए किसी एक के कौल को भी तरजीह नहीं दी जा सकती, लिहाजा दलील के जरिए तरजीह दी जाएगी। और फिर बतलाया कि साहिबैन फरमाते हैं कि वक्फ करने से वक्फ लाजिम हो जाता है और वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, चुनांचे वो दलील के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जिक्र फरमाते हैं कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बड़ी उम्दा जमीन थी जिसे समग कहा जाता था, जिसमें बहुत आला खजूर के दरख्त थे, तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको सदका करने का इरादा किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए कि या रसूल अल्लाह मैं इसको सदका करना चाहता हूं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तसद्दक भी असलीहा कि इसकी असल को सदका कर दो कि ला युबाउ वला यूरसु वला यूहबु कि न इसको बेचा जा सके, न इसमें वरासत जारी हो और न इसको हिबा किया जा सके और इसके फल को खर्च किया जाए। तो देखो इस हदीस से मालूम हुआ कि वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, इसीलिए इसको बेचा भी नहीं जा सकता, इसमें वरासत भी जारी नहीं हो सकती और इसको हिबा भी नहीं किया जा सकता। अगर वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता फिर तो ये चीजें जायज होनी चाहिए थीं। बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है और लाजिम हो जाता है। और फिर साहिब हिदाया ने साहिबैन की अकली दलील भी जिक्र की थी कि बाज़ औक़ात इंसान चाहता है कि अपने वक्फ को लाजिम कर दे ताकि उसे हमेशा इसका अजर व सवाब मिलता रहे, तो इंसान मोहताज है वक्फ के लाजिम होने का, और इंसान की इस हाजत को पूरा करना मुमकिन भी है कि इस वक्फ पर से उसकी मिल्कियत को खत्म कर दिया जाए और इसकी मिल्कियत अल्लाह के लिए करार दे दी जाए, और इसकी नजीर भी शरीयत में मौजूद है, जैसे मस्जिद है, मस्जिद पर भी किसी की मिल्कियत नहीं होती, मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए होती है और बंदों का इसे अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। तो शरीयत में एक चीज की नजीर भी मौजूद है और इंसान वक्फ लाजिम का मोहताज भी है, तो लिहाजा वक्फ लाजिम की गुंजाइश होनी चाहिए। और फिर यहां इश्काल होता था कि मस्जिद भी तो वक्फ ही है, तो साहिबैन वक्फ के लुजूम को साबित करना चाहते हैं मस्जिद के जरिए, तो गोया एक वक्फ को वो कयास कर रहे हैं दूसरे वक्फ पर। किसी चीज को अपने ही ऊपर कयास नहीं किया जाता बल्कि गैर चीज पर कयास किया जाता है, तो उसका भी जवाब जिक्र हुआ था कि जो मस्जिद है अगरचे ये वक्फ है लेकिन ये खास नौ का वक्फ है कि ये खालिस अल्लाह के लिए हो जाती है और बंदों के मुनाफे इससे मुनकतिअ हो जाते हैं, लिहाजा मस्जिद को बंदों के मुनाफे मुनाफिया के लिए इस्तेमाल करना, यानी रिहाइश के लिए या किराए पर देने के लिए या सामान वगैरह रखने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मस्जिद जब एक खास किस्म का वक्फ है तो बाकी औकाफ को मस्जिद पर कयास करना सही है भाई। और उसके बाद फिर साहिब हिदायत ने इमाम साहिब की दलील जिक्र फरमाई थी कि इमाम साहब फरमाते हैं कि वक्फ लाजिम नहीं होता क्योंकि हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला हुबूसा अन फराइज़िल्लाह तआला। मैंने बतलाया हुबूस जमा है हबीस की और हबीस बमाने महबूस के है। याद रखो ये जो वक्फ है, जो चीज वक्फ कर दी जाए, मसलन किसने बाग वक्फ कर दिया तो इस बाग को भी वक्फ कहते हैं, लेकिन ये वक्फ बमाने मौकूफ के है, जैसे खल्क बमाने मखलूक के। तो यहां पर वक्फ के बाब के अंदर जो चीज वक्फ कर दी जाती है उसको भी वक्फ कहते हैं, उसका नाम ही वक्फ पड़ गया, लेकिन ये हकीकत में वक्फ नहीं है बल्कि मौकूफ है। तो मौकूफ का नाम ही वक्फ हो गया है भाई। तो हदीस में आता है ला हुबूसा अन फराइज़िल्लाह तआला कि अल्लाह ने वारिसों के जो हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं मूरिस का माल उससे रोका नहीं जा सकता। तो हदीस से मालूम हुआ कि वक्फ जो है वो वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता, क्योंकि अगर वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाए फिर तो उसमें वरासत जारी नहीं हो सकती। लेकिन हदीस से पता चल रहा है कि अल्लाह ने वारिसों के जो हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं उनसे किसी माल को रोका नहीं जा सकता। मालूम हुआ वक्फ लाजिम नहीं होता, वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता और उसमें वरासत जारी होती है भाई। और नीज दूसरी नकली दलील जो है वह काजी शोरह का कौल जिक्र किया साहिब हिदायत ने इमाम साहिब की दलील के तौर पर। काजी शुरह फरमाते हैं जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबैइल हुबूसी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हुबूस की यानी औकाफ की बै के साथ तशरीफ लाए। गुज़श्ता उम्मतों के अंदर औकाफ की बै जायज नहीं थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीयत में औकाफ की बै को लेकर आए, यानी इस शरीयत में औकाफ की बै जायज है। और औकाफ की बै तभी जायज हो सकती है जब यह वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से न निकला हो। अगर यह वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया है और लाजिम हो गया है फिर तो इसके अंदर बै जायज नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने इमाम साहिब की तरफ से तीन अकली दलीलें जिक्र फरमाई थी। पहली अकली दलील यह जिक्र फरमाई कि जो वक्फ है इसके अंदर अभी भी बंदे की मिल्कियत है, और दलील उसकी यह है कि इस वक्फ के साथ बंदों के हुकूक का ताल्लुक है। जब मालिक ने इस वक्फ के मुनाफे फुकरा पर सदका कर दिए हैं तो फुकरा का हक वाबस्ता हो गया इस वक्फ के साथ, और इंसान का हक किसी चीज के साथ वाबस्ता हो यह दलील होती है कि यह चीज इंसान की ममलूक है। तो मालूम हुआ यह वक्फ भी ममलूक है इंसान का, लेकिन अब किसका ममलूक है, क्या वाकिफ का है या किसी और का है? तो कहते हैं किसी और का तो कतान नहीं हो सकता, तो यही मानना पड़ेगा कि इसमें अभी भी वाकिफ ही की मिल्कियत है। चुनांचे इसीलिए इस वक्फ के अंदर तमाम तसरुफात का मालिक वही होता है, वो तमाम तसरुफात का वही मालिक होता है, वही निगरान मुकरर करता है। तो मालूम हुआ ये वक्फ जो है ये आरियत के मिसल हो गया, जिसमें असल चीज का मालिक तो वही शख्स होता है जिसकी वो चीज है, अलबत्ता वो मुनाफे का मालिक किसी और को बना देता है। तो ये वक्फ भी किसकी तरह हुआ? आरियत की तरह हुआ। और फिर दूसरी दलील जिक्र फरमाई थी कि ये जो वाकिफ है ये चाहता है कि इस वक्फ का सवाब उसको हमेशा मिलता रहे, और उस वक्फ का सवाब हमेशा इसको तभी मिल सकता है जब यह वक्फ अभी भी इसकी मिल्कियत में हो, तो फिर इसके मुनाफे के सदके का इसे सवाब मिलता रहेगा। अगर यह वक्फ उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया है फिर तो वह मालिक ही ना रहा, तो फिर तो मुनाफे के सदके का उसे सवाब भी नहीं मिल सकता। और तीसरी दलील जिक्र की थी कि इसलिए क्योंकि के वक्फ में वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाए और यह वक्फ लाजिम हो जाए यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस सूरत में जवाल मिल्क ला इला मालिक लाजिम आएगा कि वाकिफ की मिल्कियत एक चीज से खत्म हो गई और आगे उसका कोई मालिक भी नहीं बना, और यह तो मशरू नहीं है जैसे साइबा जानवर भाई। मैंने बतलाया था कि जाहिलियत के जमाने में बुतों के नाम पर जानवरों को आजाद छोड़ दिया जाता था तालीक करते हुए। मसलन कोई शख्स बीमार होता तो कहता अगर मैं इस बीमारी से तंदुरुस्त हो गया तो मेरी तरफ से यह ऊंट या ऊंटनी साइबा है, या इसी तरह कोई शख्स सफर पर जा रहा होता तो वो कहता कि अगर मैं इस सफर से खैरियत से वापस आ गया तो मेरी तरफ से मेरा ये ऊंट या मेरी ऊंटनी साइबा है। और ये जो साइबा जानवर होता था इसको बुतों के नाम पर इस तरह आजाद कर देते थे और इसका वो बे इंतहा एहतराम करते थे, यहां तक कि वो इनसे किसी किस्म का नफा नहीं उठाते थे, इस पर न इस पर सवार होते थे, न इस पर बोझ लाते थे और न इसके दूध से नफा उठाते थे और नीस किसी के पानी पर या किसी की चरागाह पर इस किस्म का ऊंट या ऊंटनी आ जाती तो उसको रोका नहीं जाता था, तो वो इनका बे इंतहा एहतराम करते थे। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाते हैं मा जअलल्लाह मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन, के अल्लाह ने ये जो जानवर हैं बहीरा साइबा वसीला और हाम ये अल्लाह ने मुकर्रर नहीं फरमाए, ये तुमने अपनी तरफ से झूठी बातें घड़ ली हैं, अल्लाह ने इस किस्म का कोई हुक्म नहीं दिया। मालूम हुआ ये जो साइबा है और ये वसीला और हाम वगैरह हैं ये सब गैर मशरू हैं भाई। तो इमाम साहब की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं ये जो साइबा था ये भी जाहिलियत के अंदर इसमें भी जवाल मिल्क ला इला मालिक इसको शुमार किया जाता था कि मालिक इसको आजाद छोड़ देता था कि मैंने इस पर से अपनी मिल्कियत खत्म कर दी है और कोई इसका मालिक भी नहीं होता था। तो लिहाजा अगर वक्त के अंदर भी इस तरह की माना जाए कि इसमें वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो गई है लेकिन कोई इसका मालिक नहीं है तो इस सूरत में तो जवाल मिल्क ला इला मालिक लाजिम आएगा और ये गैर मशरू है जैसे कि साइबा होता था भाई। अलबत्ता इस पर इश्काल होता है कि अगर जवाल मिल्क ला इला मालिक जायज नहीं है मशरू नहीं है फिर तो इताक भी जायज नहीं होना चाहिए कि कोई शख्स अपने गुलाम या बांदी को आजाद करता है तो उसमें भी जवाल मिल्क ला इला मालिक है भाई, अपनी मिल्कियत आका ने खत्म कर दी और किसी दूसरे को उसका मालिक भी नहीं बनाया। तो बतलाया था कि नहीं ये जो इताक है ये जवाल मिल्क नहीं है ये इसकात मिल्क है, मिल्कियत को खत्म कर देना वजह यह कि इंसान के अंदर असल आजादी है और यह जो गुलाम बना या बांदी बनी यह किसी आरिस की वजह से पेश आया तो लिहाजा जब गुलाम को आजाद किया जाता है तो उस पर से मालिक अपनी मिल्कियत खत्म कर देता है, जब मालिक ने उस पर से अपनी मिल्कियत खत्म कर दी तो गोया उसने अपना माल तलफ कर दिया, तो उसने अपना माल तलफ कर दिया जाया कर दिया और हलाक कर दिया। हालांकि वक्फ के अंदर तो माल को हलाक नहीं किया जाता बल्कि उसके मुनाफे को फुकरा पर सदका किया जाता है, तो इताक में इतलाफ है और वक्फ में इतलाफ नहीं है, लिहाजा आप एक को दूसरे पर कियास नहीं कर सकते। या यूं कहो कि वक्फ में अगर उसको लाजिम करार दिया जाए तो उस सूरत में जवाल मिल्क इला इला मालिक लाजिम आएगा कि एक चीज ममलूक है और मालिक कोई नहीं है, जबकि गुलाम को जब आजाद किया वो तो ममलूक ही ना रहा सिरे से भाई। बात समझ में आ गई, तो दोनों में फर्क है। और नीज साहिबैन ने इस आम वक्फ को कियास किया था मस्जिद के वक्फ पर तो जवाब दिया कि नहीं आप मस्जिद पर आम वक्फ को कियास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि मस्जिद तो खालिस अल्लाह के लिए हो जाती है, चुनांचे बंदों के लिए उससे नफा उठाना मस्जिद को अपने इस और कामों के अंदर इस्तेमाल में लाना यह उनके लिए जायज नहीं होता, तो लिहाजा मस्जिद से तो बंदे का हक मुनकते हो जाता है लेकिन आम वक्फ से तो बंदे का हक मुनकते नहीं होता, उसके मुनाफे से फुकरा वगैरह फायदा उठाते हैं भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने बतलाया कि जो मतन में साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया कि इमाम साहिब के नजदीक दो सूरतों के अंदर वक्फ से वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है, एक तो यह कि हाकिम उसका फैसला कर दे यानी काजी उसका फैसला कर दे और दूसरा यह कि वाकिफ उसको अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे। तो साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि इन दो बातों में से जो पहली बात है कि हाकिम फैसला करे तो इमाम साहब के नजदीक मिल्कियत खत्म हो जाती है तो यह कौल तो सही है, वजह यह कि काजी जब किसी मुश्तहद फी मसले के अंदर फैसला कर दे तो वह फैसला लाजिम हो जाता है। मुश्तहद फी मसला वो होता है जिसमें इज्तिहाद की गुंजाइश होती है, बाज फुकहा उसमें एक बात की तरफ गए हैं तो दूसरे फुकहा दूसरी बात की तरफ गए हैं, तो यह जो मुश्तहद फी मसला हो इसके अंदर जब काजी फैसला कर देता है तो गोया काजी ने इख्तिलाफ को खत्म कर दिया। फुकहा के दो गुरोह थे, बाज की राय एक थी बाज की राय दूसरी थी, जब काजी ने फैसला कर दिया तो गोया उसने दोनों के इख्तिलाफ को खत्म कर दिया कि बात इस तरह है, काजी ने क्या कर दिया फैसला कर दिया तो इख्तिलाफ को खत्म कर दिया, तो लिहाजा जब काजी मुश्तहद फी मसले में फैसला कर दे तो वह लाजिम हो जाता है। और वो इख्तिलाफ उठ जाता है। तो यहां पर भी ये जो वक्फ है ये लाजिम होता है या नहीं, और इस पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म होती है या नहीं, इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ था। तो ये इश्तिहादी मसला था और फिर काजी ने इसमें फैसला कर दिया कि ये वक्फ लाजिम है और ये वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया है, तो काजी के फैसले ने इख्तिलाफ को खत्म कर दिया। तो यहां गोया फुकहा का इख्तिलाफ खत्म हो गया। जैसे काजी किसी झगड़े में फैसला करता है तो वो फैसला नाफिस हो जाता है, इसी तरह मुश्तहदी मसले के अंदर भी फुकहा का आपस में इख्तिलाफ होता है, तो जब काजी फैसला करता है तो वो इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। तो यहां पर भी जब काजी फैसला करेगा तो फिर वो वक्फ जो है लाजिम हो जाएगा और वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा। लेकिन मतन में जो दूसरी बात आई थी कि इमाम साहब के नजदीक अगर वाकिफ वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे तो इस सूरत में भी वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। तो साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि नहीं, इसमें फुकहा का इख्तिलाफ है कि वाकिफ अगर वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक करे तो क्या इमाम साहब के नजदीक यह वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसमें फुकहा का फिर इख्तिलाफ है। तो कहते हैं सही कौल यही है कि इस सूरत में वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलेगा, हां अलबत्ता लाजिम हो जाएगा, यानी अब इसमें वाकिफ रुजू नहीं कर सकता। जैसे कोई वसीयत की जाती है तो वो वसीयत मौत के बाद लाजिम हो जाती है क्योंकि वसीयत करने वाला तो मर चुका है, इसी तरह यह वक्फ भी जो है वसीयत के दर्जे में लाजिम हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि जो मतन के अंदर हाकिम का लफ्ज आया इससे काजी मुराद है, इसलिए क्योंकि हकमा यहकिमु हकमन अरबी जुबान में इसका माना होता है फैसला करना। काजी भी फैसले करता है और बाज औकात दो आदमी किसी तीसरे आदमी को अपने दरमियान फैसल बना देते हैं कि हमारा यह झगड़ा है आप हम दोनों में फैसला कर दीजिए, आप जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। तो ये भी हाकिम है लेकिन इसको बादशाह ने मुकरर नहीं किया, ये तो इन दो आदमियों ने आपस के झगड़े के लिए इसको हाकिम बना दिया है। तो साहिब हिदायत ने बतलाया कि जो मतन के अंदर हाकिम का जिक्र आया इससे मुराद वो हाकिम और वो काजी है जिसे बादशाह ने मुकरर किया हो, और बाकी वो शख्स जिसे फैसले के लिए दो आदमियों ने आपस में मुकरर किया है तो वो अगर मुश्तहदी मसले के अंदर एक कौल के मुताबिक फैसला कर देगा तो इससे वो कौल लाजिम नहीं होगा और इसकी वजह से इख्तिलाफ खत्म नहीं होगा बल्कि काजी उसके फैसले को बातिल कर सकता है। भाई बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि अगर मरजुल मौत में कोई शख्स वक्फ करता है तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इमाम साहब के नजदीक सेहत की हालत में वक्फ किया जाए तो वह तो लाजिम नहीं होता, लेकिन मरजुल मौत में कोई शख्स वक्फ करे तो वह लाजिम हो जाता है। लेकिन साहिब हिदायत ने बतलाया कि नहीं, सही कौल यही है कि इमाम साहब के नजदीक चाहे हालत सेहत में वक्फ किया जाए चाहे मरजुल मौत में वक्फ किया जाए वह लाजिम नहीं होता, उसमें रुजू भी हो सकता है और उसमें बया और हिबा भी हो सकती है। भाई और फिर बतलाया था कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वाकिफ जब वक्फ करेगा तो जुबान से कहने से ही उसकी मिल्कियत वक्फ पर से खत्म हो जाती है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ जुबान से कहने की वजह से वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से खत्म नहीं होगी बल्कि यहां पर वह वाकिफ जो है इस वक्फ का मालिक अल्लाह ताला को बना रहा है और अल्लाह ताला जो है उसको कसदन तो मालिक नहीं बनाया जा सकता लेकिन जिमनन मालिक बनाया जा सकता है, जैसे कि जकात और सदके में है। जकात और सदके के अंदर जकात और सदका ये अल्लाह के लिए दिया जाता है, ये अल्लाह का हक है, लेकिन फकीर को जब जकात और सदके का मालिक बना दिया गया तो फकीर को मालिक बनाने के जिमन में गोया अल्लाह को मालिक बना दिया गया। तो यहां वक्फ के अंदर भी अल्लाह को मालिक बनाना मकसूद है और वह वैसे तो नहीं हो सकता, तो किसी मुतवल्ली के कब्जे के जिमन में अल्लाह का कब्जा भी अल्लाह का मालिक होना भी साबित हो जाएगा, लिहाजा मुतवल्ली के सुपुर्द करना जरूरी है। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि जब वक्फ सही हो जाए तो हमारे अइमा के इख्तिलाफ पर, यानी जो तफसील पीछे गुजर गई उसके मुताबिक जब वक्फ सही हो जाए तो वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है लेकिन मौकूफ अलैह की मिल्कियत में यह दाखिल नहीं होता। मसलन जैद ने कहा कि मेरा यह बाग वक्फ है, इसकी आमदनी अमर पर खर्च की जाए, तो जैद हुआ वाकिफ और अमर हुआ मौकूफ अलैह जिसके लिए زید نے اپنا باغ وقف کیا ہے تو عمر جو ہے وہ اس باغ کا مالک نہیں بنا. اگر عمر اس باغ کا مالک بن جاتا پھر تو اس کے لیے بیچنا بھی جائز ہوتا, جیسے اس کے لیے اپنے باقی مملوکہ چیزیں بیچنا جائز ہیں, لیکن اس کے لیے تو بیچنا جائز نہیں, معلوم ہوا وہ ابھی بھی اس وقف کا مالک نہیں. اور نیز اگر یہ موقوف علیہ جو ہے وہ اس وقف کا مالک بن گیا تھا پھر تو یہ وقف اس سے آگے کسی دوسرے کی طرح منتقل نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر پہلے مالک نے کسی دوسرے کی طرح منتقل ہونے کی شرط لگائی ہو تو یہ وقف اس دوسرے کی طرح منتقل ہوتا ہے, معلوم ہوا آپ کہ وہ موقوف علیہ اس کا مالک نہیں بنا. مثلا دیکھو زید نے اپنا باغ وقف کیا کہ میرے اس باغ کی آمدنی 5 سال تک عمر کو دی جائے اور پھر 5 سال تک خالد کو دی جائے اور پھر 5 سال تک بکر کو دی جائے اور اس کے بعد پھر جس کی آمدنی عام فقراء پر خرچ کی جائے. تو دیکھو یہاں پہلا جو مالک ہے اس نے عمر خالد اور بکر کے لیے کچھ کچھ وقت کے لیے وقف کے منافع متعین کیے ہیں, لہذا اگر یہ موقوف علیہ اس کے مالک بن جاتے, مثلا پہلا موقوف علیہ جو عمر ہے اگر وہ اس باغ کا مالک بن جاتا پھر تو یہ اس کا مملوک ہو جاتا, لیکن یہاں پر وہ وقت منتقل ہو رہا ہے دوسرے کی طرف, معلوم ہوا موقوف علیہ اس کا مالک نہیں بنا بھائی. اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جو متن میں آیا وہ اذا صح, اس سے مراد ہے ثابتہ بھائی, جب وقف ثابت ہو جائے, اور جب وقف ثابت ہو جائے تو امام صاحب کے نزدیک تو وقف ثابت ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا, ثابت ہونا اور چیز ہے لازم ہونا اور چیز ہے. تو متن میں ثابت ہونے کا ذکر آیا ہے اور وقف کے ثابت ہونے سے تو واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی, لیکن متن میں تو آ رہا ہے کہ جب وقف ثابت ہو جائے تو واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. تو صاحب ہدایہ نے کہا کہ معلوم ہوا یہ جو متن میں آیا خرج من ملک الواقف کہ وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا, یہ صاحبین کا قول ہے, یہ صاحبین کا قول ہے, کیونکہ صاحبین کے نزدیک جب وقف ثابت ہو جاتا ہے تو وہ لازم ہو جاتا ہے اور واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے, جبکہ امام صاحب کے نزدیک تو وہ واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا. بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے آج کے سبق پر. قال ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته. وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز. بھئی اب مشاع کے وقف کے بارے میں صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مشاع کسے کہتے ہیں. مشاع کا معنی ہے پھیلا ہوا, یعنی غیر تقسیم شدہ. مثلا زید اور عمر مل کر کچھ زمین خرید لیتے ہیں, زید نے بھی آدھے پیسے ملائے, عمر نے بھی آدھے پیسے ملائے اور ان دونوں نے مل کر کچھ زمین خرید لی. تو دیکھو اس زمین کے اندر زید کا بھی حصہ ہے اور عمر کا بھی حصہ ہے, لیکن کون سا حصہ زید کا ہے اور کون سا حصہ عمر کا ہے ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی, لہذا زمین کے کسی ایک جز کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ زید کا ہے یا یہ عمر کا ہے. زید اور عمر دونوں کا حصہ اس پوری زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے, تو اس کو کہتے ہیں مشاع بھائی. زید کا حصہ اس زمین کے اندر نصف ہے, لیکن وہ نصف حصہ مشاع ہے, یعنی پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے. اسی طرح عمر کا حصہ بھی اس زمین کے اندر نصف ہے, لیکن اس کا حصہ بھی مشاع ہے, یعنی پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے. زمین کا کوئی بھی جز لے لیں, ہر جز کے اندر زید کا بھی حصہ اور عمر کا بھی حصہ. زمین کے کسی ایک جز, زمین کے کسی ایک ٹکڑے کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف زید کا ہے یا یہ صرف عمر کا ہے, بلکہ دونوں کا حصہ پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں مشاع بھائی. تو مشاع کا کیا معنی؟ پھیلا ہوا, غیر تقسیم شدہ. تو اس زمین میں عمر کا بھی حصہ ہے, زید کا بھی حصہ ہے, لیکن یہ حصہ مشاع ہے, پھیلا ہوا ہے, غیر تقسیم شدہ ہے. پھر بعد میں جب دونوں تقسیم کر لیں گے, نصف زمین زید لے لے گا اور نصف زمین عمر لے لے گا, تو اب دونوں کا حصہ الگ الگ ہو گیا. اب دونوں کا حصہ الگ الگ ہو گیا. تو پہلے جو دونوں کا حصہ پھیلا ہوا تھا پوری زمین میں, اس کو مشاع کہتے ہیں. اب مشاع حصے کا وقف جائز ہے یا نہیں؟ مثلا زید اور عمر نے مل کر زمین خریدی ہے, زمین کے اندر دونوں کا حصہ ہے اور زید اپنا حصہ وقف کرنا چاہتا ہے, तो जैद अपना मुशा हिस्सा वक्फ करना चाहता है तो क्या यह जायज है या नहीं। तो याद रखो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुशा का वक्फ भी जायज है, मुशा का वक्फ भी जायज है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, मुशा चीज का वक्फ जायज नहीं है। वजह यह कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का मजहब आप पीछे पढ़ चुके हैं, उनके नजदीक वक्फ तब लाजिम होता है जब वो वाकिफ वो जमीन या वो जायदाद किसी मुतवल्ली के कब्जे में दे दे और वो मुतवल्ली उस पर कब्जा कर ले तो फिर वक्फ जो है ताम होता है, वक्फ पूरा होता है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ तब ताम होता है जब उस पर मुतवल्ली कब्जा कर ले, और जब एक शख्स का हिस्सा अलग ही नहीं है बल्कि मुशा है, पूरी जमीन में फैला हुआ है, तो मुतवल्ली उस पर कब्जा भी नहीं कर सकता। जब मुतवल्ली उस हिस्से पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सकता तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा का वक्फ भी जायज नहीं है। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा का वक्फ जायज है कि जैद और अमर दोनों ने मिलकर जमीन खरीदी और जैद अपना गैर तकसीम शुदा यानी मुशा हिस्सा वक्फ कर देता है तो यह जायज है, और फिर बाद में दोनों उसको क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं या इसी तरह इस जमीन को चलने दें और इस जमीन से जो आमदनी हासिल हुआ करे उसको फिर तकसीम कर लिया करें। निसफ आमदनी अमर की हो जाएगी और निसफ आमदनी जो जैद के हिस्से की थी वो फुकारा में तकसीम कर दी जाए। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा चीज का वक्फ जायज है क्योंकि बाद में भी तकसीम की जा सकती है या बाद में आपस में बाहमी इत्तेफाक से इसी तरह जमीन को चलने दिया जाए कि जो आमदनी हासिल हो वो तकसीम कर ली जाए, निसफ जो है दूसरे शरीक की हो जाए और ये वाकिफ का जो हिस्सा है वो फुकरा पर तकसीम कर दिया जाए। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, मुशा हिस्से का वक्फ जायज नहीं है। वो इसको कियास करते हैं हिबा और सदके पर। याद रखो हिबा और सदका इसमें भी आप पढ़ चुके हैं कि इसमें कब्जा जरूरी है। आप किसी को कोई तोहफा दें तो सिर्फ जुबान से कहने से वो दूसरा शख्स उस तोहफे का मालिक नहीं बनता जब तक वो इस पर कब्जा ना कर ले। मेरे सामने ये किताब मौजूद है, मैं आपसे कहता हूं ये किताब मैंने आपको तोहफे के तौर पर दे दी, तो सिर्फ मेरे कहने से आप मालिक नहीं बनेंगे जब तक आप इस किताब को अपने कब्जे में नहीं ले लेते। इसी तरह सदका भी सिर्फ कहने से सदका नहीं हो जाता। फकीर को आप सदका फकीर पर सदका करते हैं तो जब फकीर उस सदके पर कब्जा कर लेगा फिर फकीर उस सदके का मालिक बनेगा। भाई मालूम हुआ सदका और हिबा जो है इसके अंदर कब्जा जरूरी है भाई, जबकि मुशा हिस्से पर तो कामिल कब्जा नहीं हो सकता भाई। तो लिहाजा मुशा हिस्से का हिबा भी जायज नहीं और मुशा हिस्से का सदका भी जायज नहीं। जैद अपना मुशा हिस्सा किसी को तोहफे के तौर पर देना चाहता है या किसी फकीर पर सदका करना चाहता है, नहीं भाई मुशा चीज का हिबा भी जायज नहीं और सदका भी जायज नहीं, क्योंकि हिबा और सदका में कब्जा जरूरी होता है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुशा हिस्से के अंदर जैसे हिबा और सदका जायज नहीं, इसी तरह मुशा हिस्से के अंदर वक्फ भी जायज नहीं होगा। हां अलबत्ता अगर वो चीज ऐसी है कि अगर उसको तकसीम किया जाए तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती तो फिर मुशा हिस्से का वक्फ भी जायज है और फिर इस तरह मुशा हिस्से का हिबा और सदका भी जायज है। मसलन दो आदमियों ने एक हमाम बनाया भाई, हमाम जिसमें गुसल किया जाता है, तो दो आदमियों ने हमाम बनाया। अब इन दोनों में से एक जो है अपने हिस्से को हिबा करना चाहता है या अपने हिस्से को सदका करना चाहता है तो अब ये मुशा चीज का हिबा और सदका भी यहां पर जायज है। वजह यह कि हमाम तो छोटी चीज है, अगर इसको तकसीम कर दिया जाएगा फिर तो यह किसी काम का नहीं रहेगा, फिर तो इससे कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। या इसी तरह पंचक्की है भाई, पंचक्की इसे कहते हैं कि पहाड़ों के अंदर ऊपर से पानी बड़ी रफ्तार से नीचे की तरफ आता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा बना लिया जाता है और उसके अंदर एक वजनी पत्थर रख दिया जाता है जो पानी की वजह से तेजी से घूमता है भाई, और फिर उस पर गंदुम वगैरह पीसी जाती है, आटा पीसा जाता है, तो इसको पंचक्की कहते हैं। ये जो पानी की मदद से चक्की चल रही है इसको क्या कहते हैं, पंचक्की कहते हैं। और ये भी देखो एक छोटा सा कमरा होता है और इसके अंदर छोटी सी एक पंचक्की है, तो इसको भी तकसीम नहीं किया जा सकता। यानी अगर तकसीम कर लिया जाएगा तो फिर इसका कोई फायदा नहीं रहेगा भाई। तो लिहाजा मुशा हिस्से का वैसे तो हिबा और सदका जायज नहीं, लेकिन अगर वो चीज इतनी छोटी है कि अगर उसको तकसीम कर दिया जाए तो उसका फायदा ही खत्म हो जाता है, तो फिर इस सूरत में मुशा हिस्से का हिबा और सदका दोनों जायज हैं। लिहाजा हमाम और पंचक्की इनके अंदर मुशा हिस्से का हिबा और सदका भी जायज है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वैसे तो मुशा चीज के अंदर हिबा और सदका जायज नहीं, लिहाजा वहां वक्फ भी जायज नहीं होगा, लेकिन अगर वो चीज बहुत छोटी है कि अगर तकसीम किया जाए तो उसका फायदा ही खत्म हो जाता है, तो फिर उसमें मुशा हिस्से का हिबा और सदका भी जायज है। जब उसमें मुशा हिस्से का सदका और हिबा जायज है तो फिर उसमें मुशा वक्फ भी जायज होगा। बात समझ में आ गई? देखिए भाई, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वक्फुल मुशाई जाइज़ुन इंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला, मुशा का वक्फ इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक जायज है, लिअन्नल किस्मत मिन तमामिल कब्ज़ी। इधर देखिए भाई, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ के अंदर कब्जा जरूरी था, मुतवल्ली कब्जा करे फिर वो लाजिम होगा, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक तो वक्फ के अंदर मुतवल्ली का कब्जा जरूरी नहीं, उसके बगैर भी वक्फ लाजिम हो जाता है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ के अंदर असल कब्जा शर्त नहीं है, तो वो चीज जिसके जरिए कब्जा ताम हो जाए यानी तकसीम करना, यह भी उनके नजदीक शर्त नहीं होगा। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, व वक्फुल मुशा जाइज़ुन इंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, के मुशा चीज का वक्फ जायज है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नजदीक, लिअन्नल किस्मत मिन तमामिल कब्ज़ी, इसलिए क्योंकि तकसीम करना यह कब्जे के ताम करने में से है। भाई जैद और अमर ने मिलकर जमीन खरीदी है, जब तकसीम करेंगे तो फिर कब्जा ताम हो जाएगा। कब्जा तो वैसे भी दोनों का जमीन पर है, जमीन दोनों ने खरीद ली है, लेकिन कब्जा ताम नहीं, कब्जा कामिल नहीं। कामिल कब्जा तब होगा जब जैद अपना हिस्सा अलग कर ले और अमर अपना हिस्सा अलग कर ले, अब दोनों का कब्जा अपने अपने हिस्से पर ताम हो गया, कामिल हो गया। तवज्जो है? तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ के अंदर कब्जा शर्त ही नहीं है, जब असले कब्जा शर्त नहीं तो तमाम कब्जा भी शर्त नहीं होगा, कब्जे का पूरा होना भी शर्त नहीं होगा। यह माना है, कहते हैं लिअन्नल किस्मत मिन तमामिल कब्ज़ी, इसलिए क्योंकि तकसीम करना यह कब्जे को पूरा करने में से है, वल कब्ज़ु इंदहु लैसा बिशर्तिन, और कब्जा तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक शर्त नहीं है, फकदा ततिम्मतुहु, तो इसी तरह कब्जे का ततिम्मा यानी कब्जे को पूरा करना यह भी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक शर्त नहीं होगा। बात समझ में आ गई? وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा का वक्फ जायज नहीं है, لأن أصل القبض عنده شرط, इसलिए क्योंकि असल कब्जा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक शर्त है, فقد ما يتم به, तो इसी तरह वो चीज जिसके लिए कब्जा ताम हो वो भी शर्त होगा, وهذا فيما يحتمل القسمة, यहां से बतला रहे हैं कि जो इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का इख्तिलाफ है ये उन चीजों में है जो तकसीम का इहतमाल रखती हैं, यानी जो तकसीम हो सकती हैं, और बाकी वो चीज जो तकसीम ही नहीं हो सकती जैसे कि हमाम है या पंचक्की है, तो वो दोनों के नजदीक जायज है भाई। तो कहते हैं वहादा फीमा यख्तमिलुल किस्मता, और ये इख्तिलाफ जो है उस चीज के बारे में है जो तकसीम का इहतमाल रखती है, फअम्मा फीमा ला यख्तमिलुल किस्मता, तो बाकी वो चीज जो तकसीम का इहतमाल नहीं रखती, फयजूजु मा शुयूई, तो उसके अंदर वक्फ जायज है शुयू के बावजूद, इंदा मोहम्मदिन रहमहुल्लाह ताला ऐजान, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक भी। जो चीज तकसीम को कबूल नहीं करती, माना यह है तकसीम किया जाए तो उसका फायदा ही खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं कि शुयू के बावजूद उसमें वक्फ जायज है भाई। तो कहते हैं फअम्मा फीमा ला यहतमिलुल किस्मता, बाकी वो चीज जो तकसीम का एहतमाल नहीं रखती, फयजूजु मा शुयूई, तो उसके अंदर वक्फ जायज है शुयू के बावजूद, इंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला आयजन, इमाम मोहम्मद रहमला के नजदीक भी, लिअन्नहु यातबिरुहु बिल हिबति वस्सदकतिल मुनफ्फजा, इसलिए क्योंकि वो इसको कियास करते हैं हिबा और सदका मुनफ्फजा पर। मैंने आपको बतलाया कि मुशा चीज के अंदर हिबा और सदका जायज नहीं है क्योंकि उसमें कब्जा जरूरी होता है, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है कि उसको तकसीम नहीं किया जा सकता तो उसमें हिबा और सदका जायज है। तो इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं वो चीज जो तकसीम को कबूल नहीं करती, जब उसमें हिबा और सदका जायज है तो उसमें वक्फ भी जायज होगा। यह माना है लिअन्नहु यअतबिरुहु बिलहिबति वस्सदकतिल मुनफ्फदति, इसलिए क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमला इसको कियास करते हैं हिबा और सदका मुनफ्फजा पर, हिबा और सदका मुनफ्फजा पर इस वक्फ को कियास करते हैं जो उस चीज में हो जो तकसीम का एहतमाल नहीं रखती। यहां भाई साहिब हिदाया ने सदका के साथ मुनफ्फजा की कैद बढ़ा दी। याद रखो नफ्फजा युनफिजु तनफीज का माना है पूरा करना, किसी चीज की तकमील करना, तो सदका मुनफ्फजा वो है जो पूरा कर दिया जाए, वो सदका जो पूरा कर दिया जाए। भाई देखिए ये जो वक्फ है ये भी सदका है, अलबत्ता ये सदका मौकूफा है, इसमें दूसरे को एक चीज का मालिक नहीं बनाया जाता बल्कि सिर्फ उसके मुनाफिया का मालिक बनाया जाता है, तो वक्फ भी सदका है लेकिन ये सदका मौकूफा है कि इसके अंदर असल जो है वो मौकूफ होती है, वो रोकी हुई होती है और सिर्फ मुनाफे का सदका होता है भाई। जबकि एक है सदका मुनफ्फजा, मसलन एक आदमी अपने हिस्से की जमीन का मालिक फकीर को बना देता है, एक शख्स अपने हिस्से की जमीन का मालिक फकीर को बना दिया, अब देखो यह सदका मुनफ्फजा है यानी यह सदका पूरा कर दिया गया, फकीर को इस जमीन ही का मालिक बना दिया गया, जबकि सदका मौकूफा यानी वक्फ के अंदर फकीर को उस सदके का मालिक नहीं बनाया जाता, सिर्फ उसके मुनाफिया का मालिक बनाया जाता है। तवज्जो है, तो यहां पर साहिब हिदायत बतला रहे हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वो चीज जो तकसीम का एहतमाल नहीं रखती तो उसके अंदर मुशा के अंदर भी वक्फ जायज है, और वक्फ भी क्या है सदका, और इसको वो कियास करते हैं हिबा पर और सदका मुनफ्फजा पर। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन्नहु यअतबिरुहु बिलहिबति वस्सदकतिल मुनफ्फदति, इसलिए क्योंकि इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह इस वक्फ को कियास करते हैं हिबा पर और उस सदके पर जिसको पूरा कर दिया जाए, इल्ला फिल मस्जिद वल मकबरति, मगर मस्जिद और मकबरा में। यह इस्तेस्ना है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल से, ऊपर मतन में आया था कि वह वक्फुल मुशाई जायजुन इंदा अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, मुशा चीज का वक्फ इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक जायज है, इल्ला फिल मस्जिद वल मकबराती, मगर मस्जिद और मकबरा में, मस्जिद और कब्रिस्तान में, मकबरा का क्या माना कब्रिस्तान, मस्जिद और कब्रिस्तान में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं मुशा हिस्से का वक्फ जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं इल्ला फिल मस्जिद वल मकबराती, मगर मस्जिद और कब्रिस्तान में, फइन्नहु ला यतिम्मु मा शुयूई, इसलिए क्योंकि ये ताम नहीं होता शुयू के साथ, ये मस्जिद और कब्रिस्तान वाला वक्फ जो है ये शुयू के साथ ताम नहीं हो सकता भाई। एक चीज को खालिस अल्लाह के लिए करना है तो जब इसमें शुयू मौजूद है तो यह ताम नहीं हो सकता। मैंने बतलाया इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुशा का वक्फ भी जायज है, किस तरह कि उस जमीन की पैदावार हासिल होगी और फिर उस पैदावार को तकसीम कर लिया जाएगा। तवज्जो है, मसलन जैद और अमर की मुश्तरका जमीन थी, जैद ने अपना हिस्सा वक्फ कर दिया तो जमीन अभी भी दोनों में उसी तरह मुश्तरका रहे, फिर भी वक्फ जायज है, और यूं कर लिया जाएगा कि जमीन से जो भी पैदावार हासिल होगी निसफ जो है वो तो अमर ले लेगा, और वो निसफ जो वक्फ हिस्से का बनता है वो फुकरा में तकसीम कर दिया जाएगा, या उसके अंदर मुहायत कर ली जाएगी भाई, या उसमें मुहायत कर ली जाएगी। मुहायत कहते हैं कि दो आदमियों में एक चीज के अंदर शिरकत है और वो इसी शिरकत पर इत्तेफाक कर लेते हैं कि यूं करेंगे कि ये मेरी और आपकी मुश्तरका जमीन है, यूं करते हैं, बारी बारी इससे नफा उठाते हैं, इसी तरह सिलसिला चलाते हैं। मसलन एक साल आप इसमें फसलें काश्त किया करें और जितनी पैदावार होगी वो आपकी है, और एक साल फिर उसमें मैं काश्त किया करूंगा और जितनी पैदावार होगी वो मेरी होगी। भाई तो इसको क्या कहते हैं, मुहायत भाई, हाया आयुहाई ओ मुहायतन, ये आगे लफ्ज साहिब हिदायत भी जिक्र फरमाएंगे भाई। तो लिहाजा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुशा हिस्से का वक्फ भी जायज है। वहां दो सूरतें बन सकती हैं कि जो भी आमदनी आए उसको फिर बाद में तकसीम कर लिया जाए, निसफ हिस्सा शरीक का हो जाएगा और निसफ हिस्सा वक्फ का हो जाएगा जो फुकरा में तकसीम कर दिया जाएगा, या मुहायत कर ली जाए कि एक साल जमीन जो है वो शरीक इस्तेमाल किया करे और एक साल जो जमीन है वो मुतवल्ली उससे पैदावार हासिल करके उसको फुकरा में तकसीम कर दिया करे। तवज्जो है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुशा का वक्फ भी जायज है क्योंकि मुशा होने के बावजूद उससे नफा उठाया जा सकता है, जबकि मस्जिद और कब्रिस्तान जो हैं ये मुशा हो तो फिर इस सूरत में वक्फ ताम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये खालिस अल्लाह के लिए होने से मानेअ होगा। और नीज यहां मुहायत भी नहीं की जा सकती, वो भी इंतहाई कबी है। मुहायत कर ली जाए कि एक साल तक ये मस्जिद रहेगी, इसमें नमाजें पढ़ी जाएंगी और फिर एक साल आप इसको खेती बाड़ी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेना, फिर अगले साल फिर दोबारा ये मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे और फिर उससे अगले साल आप फिर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर लेना, या एक साल के लिए ये जमीन जो है आप इसमें खेती बाड़ी कर लेना और एक साल इसे कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे, और इस तरह बारी बारी सिलसिला चलता रहेगा। तो कहते हैं मस्जिद और कब्रिस्तान के सिलसिले में मुहायत भी इंतहाई कबीह है, इंतहाई कभी है, लिहाजा यहां मुहायत की भी सूरत नहीं है, लिहाजा मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए जो वक्फ है वो मुशा में जायज नहीं, चाहे वो जमीन तकसीम का इहतमाल रखती हो चाहे तकसीम का इहतमाल न रखती हो, किसी सूरत में भी मस्जिद और कब्रिस्तान के सिलसिले में मुशा का वक्फ जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं इल्ला फिल मस्जिद वल मकबरती, मगर मस्जिद और कब्रिस्तान में, फइन्नहु ला यतिम्मु मा शुयू, इसलिए क्योंकि ये वक्फ ताम नहीं होता शुयू के साथ, फी मा ला यहतमिलु ऐज़न इंदा अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, उस चीज में भी जो तकसीम का इहतमाल नहीं रखती इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक। भाई मसलन जमीन का बड़ा छोटा टुकड़ा है जो तकसीम का इहतमाल ही नहीं रखता, यानी अगर तकसीम करेंगे तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, तो इसके अंदर तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह भी मुशा के वक्फ के कायल थे, लेकिन मस्जिद और कब्रिस्तान के मसले में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह मुशा का वक्फ जायज करार नहीं देते, हत्ता के जमीन का वो छोटा टुकड़ा जहां तकसीम हो ही नहीं सकती उसके अंदर भी वो मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए वक्फ के जवाज के कायल नहीं है भाई। तो कहते हैं फी मा ला यहतमिलु ऐज़न इंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, उस चीज में जो तकसीम का इहतमाल नहीं रखती उसमें भी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक, यानी इसमें वक्फ ताम नहीं हो सकता, लिअन्न बका अशिरकति यमनउल खुलूस लिल्लाह तआला, इसलिए क्योंकि शिरकत का बाकी रहना यमनउल खुलूस लिल्लाह तआला, यह खालिस अल्लाह के लिए होने से मानेअ है, जब शिरकत मौजूद है तो खालिस अल्लाह के लिए नहीं हो सकती ये चीज भाई। لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى, इसलिए क्योंकि शिरकत का बाकी रहना यह खालिस अल्लाह के लिए होने से मानेअ है, जब तक शिरकत मौजूद है एक चीज खालिस अल्लाह के लिए नहीं हो सकती, खालिस अल्लाह के लिए वो तब ही हो सकती है जब उसमें शिरकत ना हो गई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्न बका अशिरकति यमनउल खुलूस लिल्लाह तआला, इसलिए क्योंकि शिरकत का बाकी रहना यह खालिस अल्लाह के लिए होने से मानेअ है। वलिअन्नल मुहायअत फीहिमा फी गायतिल कुबह, मुहायअत मैंने बतलाया भाई दो आदमियों के दरमियान जमीन मुश्तरका है और वो इसी तरह इस पर इत्तेफाक कर लेते हैं कि इस जमीन को इसी तरह चलने देते हैं और बारी बारी से नफा उठाते हैं, इसको क्या कहते हैं मुहायअत, बाहम इत्तेफाक कर लेना और मुआफकत कर लेना। तो मुहायअत का माना है बाहम मुआफकत कर लेना और इत्तेफाक कर लेना भाई। तो कहते हैं वली अन अल मुहाय अतफी माफी गायत कुबह, इसलिए क्योंकि मस्जिद और कब्रिस्तान में मुहायत करना यह इंतहा दर्जे का कबीह है, यह इंतहा दर्जे का बुरा है। बिअबारा फी हिल मौता सनतन वयुजरा सनतन, ये बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं कि मुहायत कर ली जाए वो किस तरह होगी। कहते हैं भी अयुकबारा फी हिल मौता सनतन, बाई सूरत के इसमें मुर्दे दफनाए जाएंगे सनतन एक साल, वयुजरा सनतन और एक साल इसमें खेती बाड़ी की जाएगी। तो ये तो इंतहाई कभी है भाई कि एक जमीन बारी बारी इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि एक साल मुर्दे दफनाया करेंगे और एक साल इसमें खेती बाड़ी की जाए। वयुसल्ला फीही वक्तिन, और एक वक्त इसके अंदर नमाज पढ़ी जाए। वयुत्तखदा इस्तबलन फी वक्तिन, और एक वक्त इसको इस्तबल बनाया जाए कि इसमें घोड़े वगैरह बांधे जाएं। एक मुशा हिस्सा है लेकिन वो जमीन छोटी है, अगर तकसीम करते हैं तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती, तो भी इस मुशा के अंदर मस्जिद और कब्रिस्तान का वक्फ सही नहीं है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वली अन्नल मुहाय अतफी माफी गायतिल कुबह, इसलिए क्योंकि इस मस्जिद और कब्रिस्तान के अंदर बाहमी मुआफकत कर लेना यह इंतहाई कबीह है। भी अयुकबरा फी हिल मौता सनतन वयुजरा सनतन, बाई सूरत के एक साल इसके अंदर मुर्दे दफनाए जाए और एक साल इसमें खेती बाड़ी की जाए। वयुसल्ला फी ही फी वक्तिन वयुतखदा इस पबलन फी वक्तिन, और एक वक्त इसमें नमाज पड़ी जाए और एक वक्त इसको घोड़ों का अस्तबल बनाया जाए। बेखिलाफ इल वक्फ, बखिलाफ वक्फ के, एक तो मस्जिद और कब्रिस्तान का वक्फ है वो मुशा में जायज नहीं है। हां, और आम वक्फ मुशा में जायज है, मैंने बताया कि वहां मुहायत भी की जा सकती है और वहां पैदावार भी हासिल हो तो उस पैदावार को भी तकसीम किया जा सकता है, दोनों सूरतें हैं। कहते हैं बिखिलाफ इल वक्फी, बखिलाफ आम वक्फ के, लि इम्कान इल इस्तिगलाली, इसलिए क्योंकि नफा हासिल करना मुमकिन है। व किस्मत इल गल्लती, और गल्ले को तकसीम करना मुमकिन है, गल्ला यानी आमदनी और पैदावार। तो कहते हैं बेखिलाफ इल वक्फ, बखिलाफ जमीन और कब्रिस्तान के अलावा और जो वक्फ है कि वो जायज है मुशा के अंदर। इम्कान इल इस्तिगलाल व किस्मत इल गल्लती, इस वजह से कि आमदनी हासिल करना और उस आमदनी को तकसीम करना मुमकिन है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वलौ कफल कुल्ल सुमस्तुहिक जुज उम मिनहु बतल फिल बाकी इंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला। भाई इन्होंने आपको बतला दिया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा चीज का वक्फ जायज नहीं है। और यह भी फिर याद रखना कि ये जो शुयू है ये दो किस्म पर है भाई, एक शुयू असली और एक शुयू तारी। शुयू असली इसे कहते हैं जो वक्फ के वक्त से ही शुयू मौजूद था, और एक शुयू तारी है कि बाद में शुयू आ जाए। मसलन देखो, जैद और अमर ने मिलकर जमीन खरीदी है तो दोनों ने पैसे मिलाए और कुछ जमीन खरीद ली, अभी इन्होंने आपस में तकसीम नहीं की और जैद अपना हिस्सा वक्फ करना चाहता है तो यह वक्फ जायज नहीं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, क्योंकि जैद का हिस्सा अलग नहीं है, वो पूरी जमीन में फैला हुआ है, पूरी जमीन में फैला हुआ है, जमीन के हर हर जुज में जैद का भी हिस्सा है और अमर का भी हिस्सा है। तो ये जिस वक्त जैद वक्फ कर रहा है उस वक्त से ही जैद का हिस्सा मुशा है, इसके अंदर शुयू है भाई, इसके अंदर शुयू है। तो याद रखो, जो शुयू वक्फ के वक्त ही मौजूद हो उसको शुयू असली कहते हैं, और एक शुयू वो है जो वक्फ करते वक्त तो नहीं था लेकिन बाद में शुयू आ गया तो वो उसको शुयू तारी कहते हैं भाई, उसको शुयू तारी कहते हैं। तारा आ या तारा उ के माने हैं पेश आना, आरिज होना, तो तारी का माना हुआ पेश आने वाला, जो आरिज हुआ है। तो शुयू दो किस्म पर, एक शुयू असली और एक शुयू तारी। शुयू असली जो है वो वक्फ के मुनाफी है कि वक्फ करते वक्त ही शुयू हो, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा हिस्से में वक्फ जायज नहीं, लेकिन अगर बाद में शुयू आ जाए तो उसकी वजह से पहले वाला वक्फ बातिल नहीं होगा। देखो मिसाल से वजाहत होगी। सूरत मसला यह है कि जैद का एक बाग है, जैद ने वो वक्फ कर दिया, زید نے وہ وقف کر دیا. بعد میں ایک اور آدمی نے کچھ عرصے کے بعد دعویٰ کر دیا کہ اس باغ میں تو میرا بھی حصہ ہے, اور قاضی کے پاس گیا اور اس نے گواہ پیش کر دیے, پتا چلا واقعی باغ کے اندر نصف حصہ اس آدمی کا ہے. تو یاد رکھو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وقف باطل ہے, یہ وقف باطل ہے. وجہ یہ ہے کہ جس وقت زید نے باغ کو وقف کیا معلوم ہوا اس وقت بھی شیوع موجود تھا, اس وقت بھی شیوع موجود تھا, زید کا حصہ الگ نہیں تھا, زید کا حصہ پورے باغ میں پھیلا ہوا تھا اور اس آدمی کا حصہ بھی پورے باغ میں پھیلا ہوا تھا. اگرچہ اس وقت علم نہیں تھا کسی کو کہ یہاں پر زید کا حصہ مشاع ہے, یہاں شیوع موجود ہے, اگرچہ کسی کو علم نہیں تھا لیکن وقف کرتے وقت شیوع موجود تو تھا, لہذا یہ شیوع اصلی ہے اور شیوع اصلی سے وقف باطل ہو جاتا ہے. تو لہذا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ وقف باطل ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کو زید یہ باغ ہبہ کر دے اور بعد میں کوئی مستحق نکل آیا اور پتا چلا کہ یہ باغ تو زید اور اس آدمی کے درمیان مشترکہ ہے اور مشاع چیز کا ہبہ تو جائز نہیں, لہذا جیسے یہ ہبہ باطل ہوگا اسی طرح اس باغ کے اندر وقف بھی باطل ہوگا, کیونکہ شیوع اصلی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اور دوسرا ایک ہے شیوع طاری, بھائی جو بعد میں پیش آئے. شیوع طاری سے یاد رکھو وقف اور ہبہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مثلا زید نے اپنا باغ کسی کو ہبہ کر دیا, تحفے کے طور پر دے دیا. اب دیکھو یہ سارے باغ کا مالک زید ہے, کسی اور کا حصہ اس باغ میں نہیں ہے, تو جس وقت زید نے ہبہ کیا یہاں پر کوئی شیوع نہیں ہے, زید سارے باغ کا مالک ہے. لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد زید نے نصف باغ کے اندر رجوع کر لیا, اور آپ جانتے ہیں ہبہ کے اندر رجوع جائز ہے. تو زید نے پورا باغ کسی کو ہبہ کر دیا تھا اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں تھا, صرف زید کا باغ تھا, تو جس وقت ہبہ کیا اس وقت کوئی شیوع نہیں, لیکن بعد میں زید نے نصف باغ کے اندر رجوع کر لیا تو اب شیوع آ گیا, لیکن یہ شیوع طاری ہے جو ہبہ کے بعد پیش آیا ہے, اور شیوع طاری کی وجہ سے ہبہ باطل نہیں ہوتا, اور نیز شیوع طاری کی وجہ سے وقف بھی باطل نہیں ہوتا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یا دوسری مثال لے لیں شیوع طاری کی. مثلاً ایک آدمی مرض الموت میں مبتلا ہے, اور آپ جانتے ہیں مرض الموت میں وارثوں کا حق بھی مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے, لہذا مرض الموت میں کوئی شخص کسی کو ہبہ کرنا چاہے تو ثلث سے زیادہ ہبہ نہیں کر سکتا, اسی طرح ثلث سے زیادہ وقف بھی نہیں کر سکتا, یعنی اپنے مال کا صرف تیسرا حصہ وہ وقف کر سکتا ہے یا ہبہ کر سکتا ہے, جبکہ باقی دو ثلث جو ہیں وہ وارثوں کا حق ہے. کیونکہ یہ شخص مرض الموت میں مبتلا ہو چکا ہے, زندگی میں تو اس کو اپنے سارے مال کا اختیار تھا, جہاں مرضی خرچ کرتا, لیکن اب یہ مرنے والا ہے, اس کا مال وارثوں کی طرف منتقل ہونے والا ہے, اب وارثوں کا حق مال سے متعلق ہو گیا, لہذا اب یہ اپنے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ کسی کو تحفہ بھی نہیں دے سکتا اور تیسرے حصے سے زیادہ کو وقف بھی نہیں کر سکتا. تو ایک شخص مرض الموت میں مبتلا ہے, اس نے اپنا ایک باغ وقف کر دیا یا اپنا ایک باغ اس نے کسی کو تحفے کے طور پر دے دیا مرض الموت میں ہی, چنانچہ وہ باغ جو ہے وہ اس متولی کے سپرد کر دیا گیا یا محب لہو کے سپرد کر دیا گیا, اور پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا. بعد میں وارثوں نے دیکھا کہ ہمارے مورث کا تو اور کوئی مال ہے ہی نہیں, صرف یہی ایک باغ ہے اس کا مال, یا اور مال ہے بھی لیکن وہ تھوڑا سا ہے, تو یہ جو باغ جو اس نے وقف کیا یا یہ باغ جو اس نے ہبہ کیا ہے یہ ثلث میں سے نہیں پورا ہو سکتا, یہ ثلث میں سے پورا نہیں ہو سکتا, تو وارث رجوع کر سکتے ہیں اس باغ کے اندر کہ اس کے اندر ہمارا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے. مثلا صرف یہی باغ تھا اور کوئی مال نہیں تھا, تو معلوم ہوا اس میں سے دو ثلث جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے, دو تہائی وارثوں کا حق ہے, تو وارثوں نے دو تہائی باغ میں رجوع کر لیا. اب دیکھو اب اس باغ کے اندر شیوع آ گیا, ایک حصہ وہ محب لہو کا ہے یا ایک حصہ وقف رہ گیا اور باقی دو حصے وارثوں کے ہو گئے, ابھی تقسیم نہیں کی, شیوع آ گیا باغ کے اندر, لیکن یہ شیوع ہبہ کے وقت نہیں تھا یا یہ شیوع وقف کے وقت نہیں تھا, یہ ابھی آیا ہے, یہ شیوع ابھی آیا ہے, تو یہ شیوع طاری ہے, اور شیوع طاری کی وجہ سے وقف یا ہبہ باطل نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی, कहते हैं वलौ वक़फल कुल्ला, और अगर किसी शख्स ने सारी चीज जो है वक्फ कर दी, सुमस्तुहिक जुज उम्मिनहु, फिर उसमें से एक जुज का इस्तेहकाक निकल आया यानी कोई और उसका मुस्तहिक निकल आया, बतला फिल बाकी इंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्लाह, तो बाकी के अंदर भी वक्फ बातिल हो जाएगा क्योंकि शुयू आ गया, और ये शुयू वक्फ के वक्त से ही मौजूद था, अगरचे इलम नहीं था लेकिन शुयू मौजूद था वक्फ के वक्त से ही, और ये शुयू असली है, और शुयू असली के साथ तो वक्फ जायज नहीं। तो ये माना है कि बतला फिल बाकी इंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्लाह के बाकी हिस्से के अंदर भी वक्फ बातिल हो जाएगा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। भाई कुछ हिस्सा तो किसी और का निकल आया और बाकी हिस्से में भी वक्फ क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। यह माना है बतला फिल बाकी इंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्लाह, बाकी हिस्से के अंदर भी वक्फ बातिल हो जाएगा, लिअन्ना शुयू मुकारिनुन, इसलिए क्योंकि यह शुयू जो है मुकारिन है यानी मिला हुआ है, जिस वक्त वक्फ किया था उस वक्त से ही यह शुयू इस चीज के साथ मिला हुआ है यानी यह शुयू असली है। भाई तो कहते हैं लिअन्ना शुयू मुकारिनुन, इसलिए क्योंकि ये शुयू जो है मिला हुआ था वक्फ के साथ यानी यूं कहो ये असली है, कमा फिल हिबती, जैसे कि हिबा के अंदर है। मैंने आपको बतलाया भाई कि हिबा के अंदर भी शुयू असली हो तो हिबा बातिल और शुयू तारी हो तो हिबा बातिल नहीं, इसी तरह वक्फ के अंदर भी अगर शुयू असली है तो फिर वक्फ बातिल और अगर शुयू तारी है तो वक्फ बातिल नहीं। तो ये माना है लिअन्ना शुयू मुकारिनुन कमा फिल हिबती, इसलिए क्योंकि ये शुयू जो है मुकारिन था यानी मिला हुआ था, कमा फिल हिबती, जैसे कि हिबा के अंदर है उसमें भी शुयू असली हो तो हिबा जायज नहीं होता। भाई बेखिलाफ इमा इदारा जाल वाहिबु फिल बाजी, बखिलाफ उसके के जब हिबा करने वाला रुजो कर ले बाज के अंदर, एक शख्स ने दूसरे को अपना बाग हिबा कर दिया, तोहफे के तौर पर दे दिया, देखो हिबा करते वक्त इसमें कोई शुयू नहीं, और बाद में यह हिबा करने वाला कुछ हिस्से में रुजो कर लेता है कि निसफ बाग में मैं रुजो करता हूं, तो अब उस हिबा में शुयू आया, लेकिन यह हिबा करते वक्त शुयू नहीं था बल्कि यह इस वक्त आया है तो यह शुयू तारी है और इसकी वजह से हिबा बातिल नहीं होगा। कहते हैं बेखिलाफी मा इदारा जाल वाहिबु फिल बाजी, बखिलाफ इसके कि जब हिबा करने वाला बाज हिबा के अंदर रुजू कर ले, और जाल वारिसु फि सुलुसैन बाद मौतिल मरीजी, या वारिस जो है वो दो सुलुस के अंदर रुजू कर ले मरीज के मरने के बाद, वकद वहब औ वक़फ फि मरज़िही, इस हाल में कि उसने तहकीक हिबा किया था या वक्फ किया था अपने मरजुल मौत में, मरीज ने मरजुल मौत में वक्फ किया था या हिबा किया था और बाद में पता चला और कोई माल नहीं तो वारिस दो सुलुस में रुजो करता है तो यह शुयू तारी है और शुयू तारी से हिबा और वक्फ बातिल नहीं होते। तो कहते हैं और जाल वारिसु फिस सुलुसैन बाद मौतिल मरीज, या वारिस जो है वो मरीज के मरने के बाद दो सुलुस के अंदर रुजो कर ले, वकद वहब औ वक़फ फी मरज़िही, और तहकीक उस मरीज ने हिबा किया था या वक्फ किया था अपने मरजुल मौत में, व फिल माल यज़ीक़ुन, और इस हाल में कि माल के अंदर तंगी है, माल के अंदर तंगी है यानी ये जो बाग इसने वक्फ किया है या हिबा किया है ये सुलुस से पूरा नहीं हो रहा और फिर वारिसों ने इसमें रुजो कर लिया। तो कहते हैं वफिल माल यज़ीक़ुन, और माल के अंदर तंगी है, लिअन्ना शुयू फी ज़ालिका तारिउन, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो शुयू है वो तारी है यानी बाद में पेश आया है, वलव इस्तुहिक जुज़ मुमय्यज़ुन, दूसरी सूरत भाई एक आदमी ने अपना बाग वक्फ कर दिया या किसी को तोहफे के तौर पर दे दिया और फिर बाद में बाग के एक मुअय्यन हिस्से का कोई और मुस्तहिक निकल आया, पहले जो शख्स मुस्तहिक निकला था उसका हिस्सा पूरे बाग में फैला हुआ था तो वहां शुयू था और वक्फ और हिबा के वक्त से ही शुयू था लिहाजा वो हिबा और वक्फ बातिल। लेकिन अब दूसरी सूरत है कि कोई शख्स बाग के एक मुअय्यन हिस्से का मुस्तहिक निकल आया, मसलन एक आदमी ने आकर दावा कर दिया कि इस बाग का फुला कोना जो है उसके अंदर एक कनाल जमीन मेरी है, और फिर वो काजी के पास चला गया और गवाह पेश कर दिए तो मालूम हुआ इस बाग के अंदर दूसरे का भी हिस्सा था लेकिन वो हिस्सा फैला नहीं हुआ था बल्कि वो एक मुअय्यन हिस्सा था, लिहाजा इस सूरत में बाकी बाग के वक्फ या हिबा में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां शुयू है ही नहीं। یوں سمجھیں گے شروع سے ہی زید نے وہ ایک کنال ٹکڑا چھوڑ کر باقی سارا باغ وقف کیا تھا۔ تو ابتدا سے ہی شیوع یہاں نہیں ہے، وقف کرتے وقت بھی شیوع نہیں تھا یا ہبہ کرتے وقت بھی شیوع نہیں تھا، لہذا کسی معین حصے کا کوئی مستحق نکل آئے تو اس کی وجہ سے ہبہ یا وقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو کہتے ہیں ولو استحق جزء ممیز بعینه، ممیز کا معنی ہے جدا بھائی جدا، ولو استحق جزء ممیز بعینه، اور اگر کسی معین جدا جز کا کوئی مستحق نکل آیا، لم یبطل فی الباقی، تو باقی کے اندر وقف جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا، لعدم شیوع، شیوع نہ ہونے کی وجہ سے، ولہذا جاز فی الابتداء، اور اسی وجہ سے ابتداء میں بھی یہ جائز ہے۔ بھئی ادھر دیکھیے، زید نے اپنا باغ وقف کیا تھا، اس کے ایک کنارے پر ایک کنال کا حصہ تھا، اس پہ کس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ایک کنال حصہ تو میرا ہے بھئی، تو یہاں پر دیکھو شیوع نہیں، تو معلوم ہوا زید نے باغ کے اس حصے کو چھوڑ کر باقی حصہ وقف کیا تھا، اور جیسے ابتداءً یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اپنی ساری زمین وقف نہ کرے بلکہ اس کا کچھ معین حصہ وقف کر دے، تو یہاں بھی اسی طرح یہ جائز ہوگا بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلِحَادَ جَازَ فِي الْإِبْتِدَائِ، اور اسی طرح ابتدا کے اندر بھی جائز ہے کہ کوئی شخص اپنی پوری زمین وقف نہ کرے بلکہ اس میں سے کچھ معین حصہ وقف کر دے کہ یہ والا حصہ میں وقف کرتا ہوں۔ وَعَلَى هَذَا الْحِبَةُ وَالصَّدَقَةُ الْمَمْلُوكَةُ، اور اسی پر ہے ہبا اور صدقہ مملوکہ بھی، یعنی ہبا اور صدقہ مملوکہ جو ہے اس کے اندر بھی اگر پھیلے ہوئے حصے کا استحقاق نکل آیا، کسی نے کسی کو ہبہ کیا تھا یا کسی نے کہ باغ فقیر کو صدقہ کیا تھا اور کوئی اور مستحق نکل آیا اور اس کا حصہ پورے باغ میں پھیلا ہوا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ ثلث حصہ تو میرا ہے پورے باغ میں، تو اب اس نے جس ثلث کا دعویٰ کیا ہے وہ پھیلا ہوا ہے پورے باغ میں، کوئی الگ حصے کا اس نے دعویٰ نہیں کیا، تو یہ ہبہ اور صدقہ مملوکہ بھی باطل ہے۔ اور اگر اس باغ کے اندر جو کس نے ہبہ کیا ہے یا صدقہ کیا ہے اگر اس کے کسی معین جز کا کوئی مستحق نکل آیا تو اس کی وجہ سے یہ ہبہ اور صدقہ باطل نہیں ہوگا، یہ معنی ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْحِبَةُ وَالصَّدَقَةُ الْمَمْلُوكَةُ، اور اسی پر ہبہ اور صدقہ مملوکہ بھی ہے۔ بھئی یہاں صاحب ہدایہ نے صدقہ کے ساتھ مملوکہ کی قید لگائی، جیسے اوپر صدقہ کے ساتھ منفذہ کی قید لگائی تھی، میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ دراصل احتراز ہے وقف سے، کیونکہ وقف بھی صدقہ ہے، وقف بھی صدقہ ہے، البتہ وقف صدقہ موقوفہ ہے، یعنی اس میں کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ اس جائیداد کو اللہ کے لیے روک لیا جاتا ہے اور اس کے منافع جو ہیں وہ فقراء پر صدقہ کیے جاتے ہیں۔ تو وقف بھی صدقہ ہے لیکن صدقہ موقوفہ ہے، یعنی وقف کیا ہوا صدقہ ہے، کیا ہے؟ وقف کیا ہوا صدقہ ہے، روکا ہوا صدقہ ہے، جبکہ ایک ہے صدقہ منفذہ یا صدقہ مملوکہ۔ صدقہ منفذہ میں نے بتایا، نفذہ ینفذ تنفیذ کا معنی ہے پورا کرنا، یعنی وہ صدقہ جو پورا کر دیا گیا ہے، روکا نہیں گیا، پورا باغ ہی کسی غریب کو دے دیا، تو یہ صدقہ منفذہ ہے، اس غریب کو باغ کے منافع کا مالک نہیں بنایا بلکہ پورے باغ ہی کا مالک بنا دیا، یہ کیا ہے؟ صدقہ منفذہ۔ یا اسی کو صدقہ مملوکہ بھی کہیں گے کہ یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس فقیر کو اس کا مالک بنا دیا گیا ہے، تو وہ صدقہ جس میں فقیر کو اس جائیداد کا مالک بنا دیا جائے اس کو صدقہ منفذہ بھی کہتے ہیں اور صدقہ مملوکہ بھی، جبکہ وقف جو ہے وہ صدقہ موقوفہ ہے بھائی۔ تو یہاں صاحب ہدایہ نے جو صدقہ کے ساتھ مملوکہ کی قید لگائی اس کے ذریعے احتراز ہے وقف سے، اس کے ذریعے احتراز ہے وقف سے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا الْحِبَةُ وَالصَّدَقَةُ الْمَمْلُوكَةُ، اور اسی پر ہبہ اور صدقہ مملوکہ بھی ہے۔ آگے دیکھیے، قال ولا يتم الوقف عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله تعالى حتى يجعل اخره بجهه لا تنقطع ابدا۔ بھئی یہاں سے صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک ضروری ہے کہ وقف جو ہے اس طریقے پر کیا جائے کہ اس کا آخر ایسا ہو جو منقطع ہونے والا نہ ہو، جو ختم ہونے والا نہ ہو، ورنہ وقف صحیح نہیں ہے۔ अगर किसी ने वक्फ की ऐसी जिहत बयान की कि जो मुनकते होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो तरफेन के नजदीक ये वक्फ सही नहीं है, सही नहीं है। वक्फ मुअब्बद होना चाहिए। मसलन एक आदमी अपना बाग वक्फ करता है कि मेरे इस बाग की आमदनी जैद पर खर्च की जाए, तो तरफेन फरमाते हैं यह वक्फ सही नहीं। वजह यह कि जैद तो हमेशा रहने वाला नहीं है, यह तो कुछ साल तक जिंदा रहेगा, उस वक्त तक तो इस पर हम आमदनी खर्च करते रहेंगे, और फिर जब जैद का इंतकाल हो जाएगा तो वक्फ के खर्च करने की जिहत ही खत्म हो गई। वक्त किस पर अब खर्च किया जाए, बात समझ में आ गई। तो तरफेन रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का आखिर ऐसी जिहत होनी चाहिए जो खत्म होने वाली ना हो। मसलन एक आदमी अपना बाग वक्फ करता है कि इसकी आमदनी फुकारा पर खर्च की जाए, अब फुकारा ये तो ऐसी जिहत है जो खत्म होने वाली नहीं है, हमेशा फुकारा पर इसकी आमदनी को खर्च किया जाए, ये मुमकिन है भाई। या एक आदमी अपने बाग को वक्फ करता है कि इसकी आमदनी जैद पर खर्च की जाए, और जब जैद का इंतकाल हो जाए तो फिर इस बाग की आमदनी फुकारा पर खर्च की जाए। देखो अब इसने ऐसी जिहत बयान की जो मुनकते होने वाली नहीं है, पहली जिहत क्या जिक्र की, जैद, और उसके बाद फुकारा को जिक्र किया, और इस तरह यह वक्फ का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है भाई। तो तरफेन रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का आखिर वो ऐसी जिहत होनी चाहिए जो मुनकतिअ होने वाली ना हो, वक्फ को मुअब्बद होना चाहिए, यानी हमेशा के लिए होना चाहिए भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वलायतिम मुल वक्फ इंदा अबी हनीफत व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह ताला, के वक्फ ताम नहीं होता तरफेन रहिमहुमल्लाह के नजदीक हत्ता यजअला आखिरहू, यहां तक कि उस वक्फ के आखिर को कर दे, बिजिहतिन ऐसी जिहत में, ऐसी जानिब में कि ला तनकतिउ अबदा, जो कभी भी मुनकतिअ न होती हो, जो कभी भी खत्म ना हो। وقال ابو يوسف رحمه الله, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं इदा समा फीह जिहतन तनकति उजाजा, कि जब वाकिफ ने इस वक्फ में ऐसी जिहत जिक्र कर दी तनकति उ, जो मुनकते हो जाएगी, जाजा, फिर भी यह वक्फ जायज है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर वाकिफ ने वक्फ की ऐसी जिहत जिक्र कर दी जो मुनकते हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर भी वक्फ जायज है। मसलन एक आदमी ने कहा कि मेरा यह बाग वक्फ है, इसकी आमदनी जैद पर खर्च की जाए, अब जैद का तो कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो जाएगा भाई, तो यह ऐसी जिहत जिक्र की जो मुनकते होने वाली है, तरफेन के नजदीक यह वक्फ सही नहीं, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रमला के नजदीक यह वक्फ सही है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह वक्फ सही है, और जब वो जिहत मुनकते हो जाएगी उसके बाद यह वक्फ आम फुकारा के लिए हो जाएगा, फिर इसकी आमदनी आम फुकारा पर खर्च की जाएगी। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं इदा समा फी जिहतन तनकतिउ, कि जब वाकिफ ने इस वक्त के अंदर ऐसी जानिब जिक्र कर दी जो मुनकतिअ हो जाएगी, जाजा, तो यह भी जायज है। वसार बादहा लिल फुकारा, और उस जिहत के बाद वो वक्फ फुकारा के लिए हो जाएगा। व इल्लम युसम्मिहिम, अगरचे इस वाकिफ ने उनको जिक्र किया हो। तवज्जो है मतन पर, जरा इबारत पे नजर रखना भाई। सबसे पहले साहिब कुदूरी ने तरफेन का मजहब जिक्र किया कि उनके नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना जरूरी है, और फिर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का मजहब जिक्र किया, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ की अगर कोई ऐसी जिहत जिक्र कर दी कि वह मुनकते हो जाएगी, वह खत्म हो जाएगी, फिर भी वक्फ जायज है, फिर भी यह वक्फ जायज है, और उसके बाद यह किसके लिए हो जाएगा, फुकारा के लिए हो जाएगा। आगे देखिए लहुमा, अब तरफेन की दलील जिक्र कर रहे हैं, तरफेन के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना यानी हमेशा के लिए होना शर्त है, जरूरी है। लहुमा, तरफेन की दलील यह है अन्न मूजबल वक्फी, कि वक्फ का जो मुक्तजा है, याद रखो मूजब का माना होता है मुक्तजा, यानी वक्फ जिस चीज का तकाजा कर रहा है वो है वक्फ का मूजब भाई। तो कहते हैं लहुमा, तरफेन की दलील यह है कि अन्न मूजब अल वक्फी, के वक्फ का जो मुक्तजा है जवाल उल मिल्की बिदूनी तमलीकी, वो मिल्कियत का खत्म होना बगैर तमलीक के, यानी वक्फ से वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है और कोई और भी इसका मालिक नहीं बनता, तो वक्फ तकाजा करता है जवाल मिल्क बिदून तमलीक का, यूं कहो जवाल मिल्क ला इला मालिक, कि उस वक्त पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाए और आगे कोई और भी उसका मालिक न बने भाई। तो तरफेन के नजदीक वक्फ किस चीज का तकाजा करता है, जवाल मिल्क ला इला मालिक का, यूं कहें जवाल मिल्क बिदूनी तमलीक का, तवज्जो है। और जवाल मिल्क जो है वह हमेशा मुअब्बद होता है, जैसे गुलाम को आजाद कर दिया जाए, गुलाम को आजादी मिल जाए तो वह आजादी हमेशा के लिए होती है भाई। तो लिहाजा वक्त के अंदर भी जब जवाल मिल्क है तो वक्त को भी मुअब्बद होना चाहिए, अगर वक्त मुअब्बद नहीं है तो मालूम हुआ वक्त जिस चीज का तकाजा कर रहा था वह नहीं पाई गई, और जब वह चीज नहीं पाई गई तो वक्त भी सही नहीं है भाई। फिर देख लीजिए तर्जमा, लहुमा तरफेन की दलील यह है अन्ना मूजबल वक्फी के, वक्फ का जो मुक्तजा है जवाल उल मिल की बिदूनी तमली की, वो मिल्कियत का खत्म होना है बगैर किसी दूसरे को मालिक बनाए, व अन्नहू यता अब बदू, और ये जवाल मिल्क जो होता है ये हमेशा के लिए होता है, कल इत्क जैसे कि आजादी है, फ़इदा कानतिल जिहतु युतवहमुन क़िताउहा, बस जब वक्त की जो जिहत है युतवहमुन क़िताउहा उसके मुनक़ते होने का वहम होता हो, अगर वक्फ की ऐसी जिहत बयान की जिसके मुनक़ते होने का वहम होता है कि जिहत तो खत्म हो जाएगी, तो इस सूरत में मालूम हुआ वक्फ का मुक्तज़ा नहीं पाया गया, वक्फ तो किस चीज का तकाजा कर रहा था कि जवाल मिल्क हो, और जवाल मिल्क हमेशा के लिए होता है, तो मालूम हुआ वक्फ हमेशा के लिए होने का तकाजा कर रहा था, तो अगर ऐसी जिहत जिक्र कर दी जो हमेशा के लिए नहीं है तो वक्फ का मुक्तजा नहीं पाया गया, लिहाजा वक्फ बातिल होगा। तो कहते हैं फईदा कानतिल जिहतु युतवहमुन क़िताउहा, तो जब उस वक्फ की जिहत जो है उसके मुनक़ते होने का वहम होता हो, तो ला यतवफ़रु अलैहि मुक्तजाहु, तो इस पर वक्फ का मुक्तजा हासिल नहीं होता। तवज्जो है, तवफुर का माना है मुयस्सर होना, तवफुर का क्या माना, मुयस्सर होना यानी हासिल होना, ला यतवफ्फरु अलैहि मुक्तजाहु, तो इस पर तो वक्फ का मुक्तजा हासिल नहीं होता। इधर देखिए, अगर वक्फ की जो जिहत बयान की है वो हमेशा के लिए नहीं है, मुनक़ते होने वाली है, तो इस पर तो वक्फ का मुक्तजा हासिल नहीं हो रहा, वक्फ तो मुअब्बद होने का तकाजा कर रहा था, माना समझ में आ गया। तो कहते हैं फैदा कानतिल जिहतु युतवहमुन क़िताउहा, जब वक्फ की जो जिहत है उसके मुनक़ते होने का वहम होता हो, तो ला यतवफ़रु अलैहि मुक्तज़ाहु, तो इस पर तो वक्फ का मुक्तज़ा हासिल नहीं होता। फलिहादा कानत तौकीतु मुबतिलन लहू, तौकीत कहते हैं वक्त मुतय्यन करना, वक्त की मिकदार बयान करना, तो कहते हैं फलिहादा कानत तौकीतु मुबतिलन लहू, तो इसीलिए वक्त का मुकर्रर करना यह वक्फ को बातिल कर देता है। वक्फ के लिए कोई वक्त मुकर्रर कर दिया जाए कि मैं 10 साल के लिए वक्फ कर रहा हूं, या 20 के लिए, या 50 के लिए, या 100 साल के लिए मैं सिर्फ वक्फ कर रहा हूं, तो ये जो तौकीत है यह वक्फ को बातिल कर देती है, क्योंकि वक्फ जो है ताबीद का तकाजा करता है कि हमेशा के लिए होना चाहिए। तो ये माना है फलिहादा कानत तौकीतु मुबतिलन लहू, इसीलिए वक्त का मुकर्रर करना ये वक्फ को बातिल कर देता है, का तौकीत फिल बैई, जैसे बैअ के अंदर वक्त मुतय्यन करना, भाई आप किसी को अपनी चीज बेचते हैं तो देखो वो बेचना हमेशा के लिए होता है, चंद दिन के लिए बैअ नहीं होती कि ये चीज मैंने आपको 10 दिन के लिए बेची है, 10 दिन के बाद आपको वापस देनी पड़ेगी, नहीं भाई, बैअ जब भी की जाती है वो हमेशा के लिए की जाती है। तो जैसे बैअ के अंदर वक्त को मुकर्रर कर दिया जाए तो बैअ बातिल होती है, इसी तरह वक्फ के अंदर भी अगर वक्त मुकर्रर कर दिया जाए तो वक्फ भी बातिल है भाई। ये माना है का तौकीत फिल बैई, जैसे बैअ के अंदर तौकीत है। यहां तक बात समझ में आ गई, तो तरफेन रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ जो है वो जवाल मिल्क का तकाजा करता है, और जवाल मिल्क मुअब्बद होती है, लिहाजा वक्फ भी मुअब्बद होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। यहां तक तरफेन रहमतुल्लाह के मजहब की तफसील थी भाई, और उनकी दलील जिक्र थी भाई। तरफेन यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, यहां इश्काल होता है कि जो ऊपर इन्होंने कहा लहुमा तरफेन की दलील यह है कि अन्न मूजबल वक्फी जवाल उल मिल्की बिदूनी तमलीकी, कि वक्फ जो है वो तकाजा करता है जवाल मिल्कियत का बगैर तमलीक के। वक्फ के अंदर मिल्कियत खत्म हो जाती है वाकिफ की। तो इस पर इश्काल होता है कि आपने अभी हमें पीछे बताया था कि इमाम साहब के नजदीक वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होती, वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होती। चुनांचे जहां किताबुल वक्फ शुरू हुई थी वहीं पर साहिब हिदायत ने बतलाया था कि इमाम साहब के नजदीक वक्फ कहते हैं हबसुल आईनी अला मिल्किल वाकिफी, एक मुअय्यन चीज को रोक लेना वाकिफ की मिल्कियत पर। मालूम हुआ वक्फ करने वाले की मिल्कियत वक्फ पर से खत्म नहीं होती। और यहां आप दलील जिक्र फरमा रहे हैं लहुमा की तरफेन के नजदीक अन्न मूजबल वक्फी जवाल उल मिल्क बिदूनी तमलीकी, कि वक्फ का जो मुक्तजा है वो जवाल मिल्क बिदूनी तमलीक है, जवाल मिल्क है यानी वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है। हालांकि ये तो इमाम साहब का मजहब नहीं है, लेकिन आप जिक्र कर रहे हैं कि ये इमाम साहब का भी मजहब है और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का भी मजहब है। एतराज समझ में आया? तो याद रखना फिर शारहीन जवाब देते हैं कि वक्फ के बारे में इमाम साहब से दो रिवायतें हैं। एक रिवायत वो है जो पीछे गुजर गई कि वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता। अलबत्ता इमाम साहब से एक रिवायत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के मिसल भी आई है कि वक्फ जो है वो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। तो ये जो दलील जिक्र की ये इमाम साहब के उस दूसरे कौल पर मबनी है। तो इमाम साहब का दूसरा कौल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की तरह हुआ, तो मालूम हुआ दोनों के नजदीक वक्फ के अंदर वाकिफ की मिल्कियत वक्फ पर से खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये तो बात शारहीन ने जवाब दिया कि यहां पर ये जो दलील जिक्र की ये इमाम साहब के दूसरे कौल पर मबनी है, जबकि बात शारहीन ये जवाब देते हैं कि यहां पर भी वो सूरत बना लें जब इमाम साहब के नजदीक वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है। और जहां किताबुल वक्फ शुरू की थी वहां साहिब हिदायत ने आपको बतलाया था कि जब हाकिम फैसला कर दे तो इमाम साहब के नजदीक वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है। तो यहां पर भी वो सूरत बना लें जब हाकिम फैसला कर दे वक्फ के लाजिम होने का, तो उस सूरत में इमाम साहब के नजदीक भी वाकिफ की मिल्कियत खत्म और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक तो वैसे ही वक्फ जब सही हो जाए तो वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है। तो इस सूरत में फिर मालूम हुआ दोनों के नजदीक वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है और यह ताबीद का तकाजा करता है कि यह वक्फ हमेशा के लिए होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे देखिए वली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह। अब इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की दलील जिक्र फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। जरा फिर मतन पर आइए भाई, मतन के अंदर आया था वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं इदा सम्मा फीही जिहतन तनकतिउ जाजा, कि जब वाकिफ ने वक्फ के अंदर ऐसी जिहत जिक्र कर दी तनकतिउ जो मुनकते हो जाएगी जाजा, फिर भी वक्फ जायज है, फिर भी वक्फ जायज है। तो अब फुकहा के दो गुरोह हो गए भाई। बाज फरमाने लगे कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना शर्त ही नहीं है, वक्फ कुछ मुद्दत के लिए भी किया जा सकता है और हमेशा के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए तो मतन में आया इजा सम माफी ही जिहतन तन कत्यो, अगर ऐसी जिहत जिक्र कर दी जो मुनकते होने वाली है जाजा, फिर भी वक्फ जायज है। तो बास फुकहा फरमाते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना जरूरी ही नहीं है भाई, वक्फ का मुअब्बद होना जरूरी नहीं है। लेकिन बास फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, वक्फ का मुअब्बद होना हमारे तीनों अइमा के नजदीक शर्त है। हां, फर्क सिर्फ इतना है तरफेन के नजदीक मुअब्बद होने को लफ्जों में भी जिक्र करे कि ये मैं हमेशा के लिए वक्फ कर रहा हूं, ऐसी जिहत जिक्र करे जो कभी भी खत्म होने वाली ना हो भाई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक जब भी कोई शख्स वक्फ करेगा वो हमेशा के लिए ही होगा, चाहे वो हमेशा रहने वाली जिहत को जिक्र करे या न करे, वो चाहे मुनकते होने वाली जिहत को जिक्र कर दे फिर भी वो वक्फ हमेशा के लिए ही होगा। और वो जिहत जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो वक्फ आम फुकारा के लिए हो जाएगा। तवज्जो है? तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के मजहब के बारे में फुकाहा के दो गुरोह हैं भाई। बाज़ फरमाते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना शर्त ही नहीं, लेकिन साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि सही कौल यही है कि वक्फ का मुअब्बद होना हमारे तीनों अइमा के नजदीक शर्त है। अलबत्ता सिर्फ फर्क इतना है कि तरफैन के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना लफ्जों में भी जिक्र किया जाए और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना लफ्जों में जिक्र किया जाए या ना किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील जिक्र करेंगे उन फुकहा के कौल के मुताबिक जो फरमाते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना जरूरी ही नहीं है। तो कहते हैं वली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नल मकसूद हुआ तकर्रुब इलल्लाह तआला, कि वक्फ के जरिए जो मकसूद है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। ये वक्फ के जरिए जो मकसूद है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। भाई देखो इंसान नेकी करता है तो उसे अजर सवाब मिलता है और उसके दराजात ऊंचे होते हैं और उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला जाता है। जितनी नेकियां ज्यादा करता जाएगा उतना ही अल्लाह का कुर्ब ज्यादा मिलता चला जाएगा। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो वक्फ है इसके जरिए मकसद यह है कि इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, और अल्लाह का कुर्ब दोनों सूरतों में मिलता है, चाहे आप वक्फ मुअब्बद करें चाहे कुछ अरसे के लिए करें। मसलन एक आदमी ने अपनी जमीन सिर्फ 10 साल के लिए वक्फ की है तो 10 साल तक इसको सवाब मिलता रहेगा और खूब इसके दराजात बुलंद हो जाएंगे, और एक आदमी ने हमेशा के लिए अपनी जमीन जो है वक्फ की है तो उसे हमेशा अजर व सवाब मिलता रहेगा, उसके दराजात बुलंद होते चले जाएंगे और अल्लाह का कुर्ब उसे हासिल होता चला जाएगा। भाई तवज्जो है, बाज़ फुकहा की राय यह है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वक्फ के जरिए मकसद है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, तो वक्फ चाहे थोड़ी मुद्दत के लिए किया जाए या हमेशा के लिए किया जाए दोनों सूरतों में अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। हां जब मुअब्बद होगा तो तब जरा ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में अल्लाह का कुर्ब मिलेगा यानी अजर व सवाब मिलेगा, चाहे वो वक्फ हमेशा के लिए हो या हमेशा के लिए ना हो। भाई तो कहते हैं वली अबी यूसुफ रहमतुल्लाह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नल मकसूद हुआ तकर्रुब इलल्लाह तआला, कि वक्फ के जरिए जो मकसद है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। वह हुआ मुवफ्फरुन अलैही, वफ्फर युवफ्फिरु तौफीर का माना है पूरा हिस्सा देना, मुवफ्फर जिसको पूरा हिस्सा दिया जाए यानी जो पूरी तरह हासिल हो जाए। भाई तो कहते हैं कि वक्त के जरिए जो मकसूद है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। वह हुआ मुवफ्फरुन अलैही, और वो वक्त पर हासिल हो जाता है, वो वक्त पर हासिल हो जाता है। जब वक्त करेगा तो चाहे कुछ मुद्दत के लिए करे चाहे ज्यादा मुद्दत के लिए करे दोनों में अल्लाह का कुर्ब है। हां मुअब्बद करेगा तो जरा ज्यादा कुर्ब मिलेगा और मुअक्कत करेगा तो जरा कम कुर्ब मिलेगा, लेकिन बहरहाल कुर्ब तो दोनों में हासिल हो रहा है। तो कहते हैं वह हुआ मुवफ्फरुन अलैही, और ये मकसद जो है ये इस वक्त पर पूरी तरह हासिल हो जाता है। लिअन्न तकर्रुबा, इसलिए क्योंकि अल्लाह का कुर्ब हासिल होना तारतन यकून, कभी कभार ये इस सूरत में होगा। फिर सर्फ इला जिहतिन तन कतियो, इस सूरत में कि इस वक्फ को खर्च किया जाए ऐसी जिहत में जो मुनकते होने वाली है। अगर वक्फ को ऐसी जिहत में खर्च किया जाए जो मुनकते होने वाली है तो इस सूरत में भी अल्लाह का कुर्ब तो हासिल होगा, अगरचे हमेशा के लिए तो नहीं लेकिन अल्लाह का कुर्ब तो हासिल हो रहा है। तो कहते हैं लिअन्न तकर्रुबा, इसलिए क्योंकि अल्लाह का कुर्ब हासिल होना तारतन कभी कबार, यकून फी सर्फी कभी कबार वो खर्च करने से होगा, इला जिहतिन तन कतियो ऐसी जिहत में जो मुनकते होने वाली है, कभी कबार अल्लाह का कुर्ब ऐसी जिहत में खर्च करने से हासिल होगा जो मुनकते होने वाली है, और कभी अल्लाह का कुर्ब ऐसी जिहत के अंदर खर्च करने से हासिल होगा जो मुनकते होने वाली नहीं है। तो कहते हैं लिअन्न तकर्रुबा, इसलिए क्योंकि अल्लाह का कुर्ब हासिल होना तारतन यकून कभी कबार यह होगा, फिर सर्फ इला जिहतिन तनकतियो ऐसी जिहत में खर्च करने से जो मुनकते होने वाली है, वह मर्रतन बिसर्फ इला जिहतिन तताअब्बदु, और अल्लाह का कुर्ब कभी कबार ऐसी जिहत में खर्च करने से हासिल होगा तताअब्बदु जो हमेशा के लिए होगी, फयसिहु फिल वजहैन, लिहाजा वक्फ सही होगा दोनों सूरतों में चाहे हमेशा के लिए हो चाहे कुछ वक्त के लिए हो। भाई یہ امام یوسف رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل تھی بعض فقہا کے قول کے مطابق. اب دوسرا قول ذکر کر رہے ہیں. وقیل اور کہا گیا ہے ان التابید شرط بالاجماع, کہ وقف کا مؤبد ہونا تو بالاجماع شرط ہے. اجماع سے تمام امت کے فقہا کا اجماع مراد نہیں ہے بلکہ ہمارے ائمہ کا اجماع اور اتفاق مراد ہے. تو کہتے ہیں وقیل اور کہا گیا ہے ان التابید شرط بالاجماع, کہ وقف کا مؤبد ہونا یہ بالاتفاق شرط ہے, یعنی ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک. الا ان عند ابی یوسف رحم اللہ, مگر یہ کہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک لا یشترط ذکر التابید, تابید کو ذکر کرنا شرط نہیں ہے, وقف کے مؤبد ہونے کو ذکر کرنا شرط نہیں ہے. لان لفظۃ الوقف والصدقۃ منبئۃ عنہ, وہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص وقف کرے گا تو وقف کا لفظ یا صدقہ کا لفظ اس زبان سے کہے گا, اور وقف اور صدقے کا لفظ وہ خود ہی مؤبد ہونے کی خبر دیتا ہے, کیونکہ وقف بھی ہمیشہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے اور صدقہ بھی ہمیشہ کے لیے کیا جاتا ہے. تو جب وقف یا صدقے کا لفظ خود مؤبد ہونے پر دلالت کر رہا ہے تو علیحدہ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک. بھائی کہتے ہیں لأن لفظۃ الوقف والصدقۃ, اس لیے کیونکہ وقف اور صدقے کا جو لفظ ہے منبئۃ عنہ, وہ اس تابید کی خبر دیتا ہے. وقف اور صدقے کے لفظ سے ہی تابید کا پتہ چلتا ہے. لما بینا, اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ انہ ازالت الملک بدون تملیک, کہ جو وقف ہے یہ ملکیت کو ختم کرنا ہے بدون تملیک, بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے. کل عتق, جیسے کہ آزادی ہے, غلام آزاد ہوتا ہے تو وہاں کسی دوسرے کو اس کا مالک نہیں بنایا جاتا. تو جیسے آزادی میں زوال ملک ہے بدون تملیک, اسی طرح وقف میں بھی زوال ملک ہے بدون تملیک. اور جیسے آزادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے تو اسی طرح وقف بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو یہ معنی ہے لما بینا, اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ انہ ازالت الملک بدون تملیک, کہ جو وقف ہے یہ واقف کی ملکیت کو ختم کرنا ہے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے. کل عتق, جیسے کہ آزادی ہے. ولہذا قال فی الکتاب, تو یہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ وقف کی ایسی جہت ذکر کر دی جائے جو منقطع ہونے والی ہے پھر بھی وقف صحیح ہوتا ہے. بھائی دیکھیے, میں نے بتلایا امام ابو یوسف رحم اللہ کے مذہب کے بارے میں فقہا کے دو گروہ ہیں. بعض فقہا فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک وقف کا مؤبد ہونا ضروری ہی نہیں ہے, لیکن بعض فرماتے ہیں کہ وقف کا مؤبد ہونا ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک ضروری ہے. امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی وقف کا مؤبد ہونا ضروری ہے, چنانچہ وہ فرماتے ہیں. اسی لیے تو متن میں ذرا دیکھیے, متن میں جہاں امام ابو یوسف رحم اللہ کا قول ذکر ہوا وہیں پر آگے ہے وَسَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِمْ, کہ اس جہت کے منقطع ہو جانے کے بعد وہ وقف عام فقراء کے لیے ہو جائے گا اگرچہ اس واقف نے ان کا ذکر نہ کیا ہو. تو صاحب قدوری کا یہ قول یہ بتلا رہا ہے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی وقف مؤبد ہی ہوتا ہے چاہے واقف اس کو ذکر کرے یا ذکر نہ کرے. بھائی تو اب آئیے سبق پر. کہتے ہیں ولہذا قال فی الکتابی, اور اسی وجہ سے کتاب یعنی قدوری کے اندر صاحب قدوری نے فرمایا فی بیان قولی, امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کو بیان کرتے ہوئے, امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کو بیان کرتے ہوئے صاحب قدوری نے فرمایا وَسَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِمْ, کہ اس جہت کے بعد وہ وقف عام فقراء کے لیے ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِمْ, اگرچہ واقف ان کو ذکر نہ کرے. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ, اور یہی قول صحیح ہے. صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں, یہی قول صحیح ہے کہ یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی وقف کا مؤبد ہونا شرط ہے, البتہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ, اور یہی قول صحیح ہے. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ, یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تابید کو ذکر کرنا شرط ہے, تابید کو ذکر کرنا شرط ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وقف ہے اس کی آمدنی یا جو منافع ہیں ان کو صدقہ کیا جاتا ہے, جو زمین وغیرہ وقف کی ہے उसके मुनाफे या आमदनी को सदका किया जाता है, और यह सदका हमेशा के लिए भी हो सकता है और कुछ वक्त के लिए भी हो सकता है, लिहाजा ताबीद को जिक्र करना जरूरी है। अगर वो ताबीद को जिक्र नहीं करता, मुतलकन वक्फ जिक्र करता है, तो इसको ताबीद पर हम महमूल नहीं कर सकते। वक्फ में मुनाफे का या आमदनी को सदका किया जाता है, और यह सदका कुछ वक्त के लिए भी हो सकता है और हमेशा के लिए भी हो सकता है। तो एक आदमी मुतलकन इस वक्त को जिक्र करे तो इसको ताबीद पर आप महमूल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां दोनों एहतमाल मौजूद हैं, कुछ वक्त के लिए होने का भी एहतमाल है और हमेशा के लिए होने का भी एहतमाल है। तो आप इसको ताबीद पर महमूल नहीं कर सकते बगैर किसी दलील के, तो उसके लिए दलील चाहिए कि वक्फ करने वाला खुद इसको जिक्र करे। भाई तो कहते हैं वाइंदा मोहम्मद इन रहमहुल्लाह ताला, और इमाम मोहम्मद रहमला के नजदीक जिक्र ताबीद शर्त, ताबीद को जिक्र करना शर्त है। लिअन्नहा दा सदका तुम बिल मनफाति औ बिल गल्लति, इसलिए क्योंकि ये जो वक्फ है ये नफे या आमदनी का सदका है। वक्फ में क्या किया जाता है? मुनाफे या आमदनी को सदका किया जाता है। भाई इधर देखिए, वक्फ के अंदर बाज़ औकात आमदनी सदका की जाती है और बाज़ औकात नफा सदका किया जाता है। आमदनी सदका, जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी, एक आदमी ने अपना बाग वक्फ कर दिया कि इस बाग की जितनी आइंदा आमदनी और पैदावार हो वो फुकारा पर खर्च की जाए, तो यहां पर किस चीज को सदका कर रहा है? आमदनी को और पैदावार को। और बाज़ औकात मुनाफे को सदका किया जाता है। मसलन एक आदमी का एक मकान है, वो मकान उसने वक्फ कर दिया कि मेरे इस मकान में आज के बाद मुसाफिर रहा करें, मेरे इस मकान में आज के बाद मुसाफिर रहा करें, जो भी मुसाफिर आए मेरे इस मकान में ठहरा करे। तो अब उसने अपने मकान की कोई आमदनी नहीं सदका की, बल्कि उसका नफा यानी उसकी रिहाइश को सदका कर दिया है। बात समझ में आ गई? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ताबीद का जिक्र शर्त है। लिअन्नहा दा सदका तुम बिल मनफाति औ बिल गल्लति, इसलिए क्योंकि जो वक्फ है ये नफे या आमदनी का सदका है। वदालिका कद यकून मुअक्कतन वकद यकून मुअब्बदा, और ये सदका कभी कभार तो कुछ वक्त के लिए होता है और कभी कभार हमेशा के लिए होता है। फमुतलकुहु ला यंसरिफु इला ताबीदि, लिहाजा मुतलक वक्फ जो है वो ताबीद की तरफ नहीं पलटेगा, बगैर दलील के ताबीद की तरफ इसको हम नहीं फेर सकते, बल्कि वाकिफ का जिक्र करना जरूरी है। यह माना है फमुतलकुहु लायन सरिफु इला ताबीदी, तो यह वक्त का मुतलक है, वो ताबीद की तरफ नहीं फिरेगा। फला बुद्ध मिन तनसीसी, लिहाजा तनसीस जरूरी है। नससयुनससु तनसीसन, भाई स्वाद के साथ है। तनसीस का माना है तसरीह करना, यानी साफ लफ्जों में एक चीज को जिक्र करना। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं वक्फ के अंदर आमदनी या मुनाफे को सदका किया जाता है, और यह कुछ वक्त के लिए भी हो सकते हैं और हमेशा के लिए भी। लिहाजा अगर हमेशा के लिए जिक्र नहीं किया तो हम इसे हमेशा के लिए करार नहीं दे सकते, लिहाजा हमेशा के लिए इसको सदका करने की तसरीह जरूरी है कि उसको लफ्जों में जिक्र करे। यह माना है फला बुद्ध मिन तनसीसी, लिहाजा इस पर तसरीह जरूरी है कि यह चीज मैं हमेशा के लिए वक्फ कर रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ के लिए तीन शर्तें हो गईं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ के लिए तीन शर्तें हो गईं। एक तो शर्त यह थी कि वक्फ का मुतवल्ली के कब्जे में देना जरूरी है। दूसरी शर्त यह थी कि वह वक्फ मुशा नहीं होना चाहिए, वह वक्फ मुशा नहीं होना चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक तो मुशा का वक्त भी जायज है, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा का वक्त जायज नहीं। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक दूसरी शर्त यह हो गई कि वो वक्त मुशा नहीं होना चाहिए, और तीसरी यह शर्त हो गई कि उसकी जिहत ऐसी हो जो कभी भी मुनकते होने वाली न हो। गई तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ के लिए तीन शर्तें हैं भाई। एक तो यह कि मुतवल्ली का कब्जा जरूरी है, दूसरा कि वो मुशा नहीं होना चाहिए, और तीसरा कि उसकी जिहत ऐसी हो जो कभी मुनकते होने वाली और खत्म होने वाली न हो। भाई आगे देखिए, काला वयजूज वक्फुल अकारी लिअन्न जमातम मिन सहाबती रिजवानुल्लाह अलैहिम वकफूहु। भाई यहां से अब साहिब हिदायत आपको यह बतलाएंगे कि किन चीजों का वक्फ जायज है और किन चीजों का वक्फ जायज नहीं। तो याद रखो, एक तो गैर मनकूली चीजें हैं यानी आकार, भाई आकार का क्या माना, गैर मनकूली जायदाद, यानी वो चीज जिसे एक जगह से दूसरी जगह नकल नहीं किया जा सकता, जैसे बाग है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है और खेत है, ये सारी चीजें ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं की जा सकती, तो इनको आकार कहते हैं, यानी गैर मनकूली जायदाद। और इसके अलावा बाकी चीजें जो हैं वो मनकूली हैं, बाकी तमाम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी मशीनरी ही क्यों ना हो, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, तो वो मनकूली चीजें कहलाती हैं। तो याद रखो, ये जो आकार है यानी गैर मनकूली जायदाद, इसमें तो बिल इत्तेफाक हमारे तीनों आइमा के नजदीक इसमें वक्फ जायज है, इसके अंदर वक्फ जायज है, क्योंकि खुलफाए राशिदीन ने और दीगर सहाबा ने अपनी जायदादें वक्फ फरमाई थी भाई। तो लिहाजा गैर मनकूली जायदाद के वक्फ में कोई इख्तिलाफ नहीं, अलबत्ता मनकूली चीजें जो हैं उनमें वक्फ हो सकता है या नहीं। तो याद रखो, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मनकूली चीजों में वक्फ नहीं हो सकता, मनकूली चीजों में वक्फ नहीं हो सकता। वजह यह कि अभी आपको इन्होंने बतलाया कि तरफैन रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना, हमेशा के लिए होना शर्त है, और यह मनकूली चीज यह तो हमेशा रहने वाली नहीं है, यह कुछ साल तक रहेगी फिर खत्म हो जाएगी, आला से आला मशीनरी भी हो कुछ सालों के बाद वो गल कर खत्म हो जाएगी भाई। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक सिर्फ गैर मनकूली जायदाद का वक्फ जायज है, मनकूली चीजों का वक्फ मुतलकन जायज ही नहीं, किसी भी मनकूली चीज का वक्फ जायज नहीं है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि घोड़े और असलहे का वक्फ भी जायज है, घोड़ा भी मनकूली है, असलहा भी मनकूली है, लेकिन इनका वक्फ जायज है क्योंकि इनका जिक्र अहादीस मुबारका में आया है। नीज इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गैर मनकूली जायदाद के ताबिअ करते हुए मनकूली चीज में भी वक्फ जायज है। मसलन एक शख्स अपनी गैर मनकूली जायदाद वक्फ करता है और उसके ताबिअ करते हुए कुछ मनकूली चीजों को भी वक्फ कर देता है, तो फिर इस सूरत में मनकूली चीजों में भी वक्फ सही हो जाएगा। मनकूली चीजों में कसदन तो वक्फ नहीं हो सकता कि बाकायदा इरादे से उनको वक्फ किया जाए, लेकिन किसी गैर मनकूली चीज के ताबिअ करते हुए उनमें वक्फ जायज है। मसलन एक आदमी अपना खेत जो है यानी काबिले काश्त जमीन जो है उसको वक्फ करता है, अब देखो ये तो आकार है, गैर मनकूली जायदाद है, इसको तो वक्फ करना जायज है, और इसी खेत के ताबिअ करते हुए वो इस खेत में हल चलाने के लिए कुछ बैल हैं या कुछ मशीनरी है या और आलात वगैरह हैं, या इसी तरह उस खेत के अंदर हल चलाने वाले जो काश्तकार हैं, जो इसी आदमी के गुलाम हैं, इन सब मनकूली चीजों को भी वो वक्फ कर देता है इस जमीन के साथ। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं यहां असल वक्फ जमीन के अंदर हुआ और बाकी चीजों के अंदर जमीन के ताबे होने की वजह से उनमें भी वक्फ सही हो गया। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मनकूली चीजों में से घोड़े और असलहे का वक्फ जायज है क्योंकि उसका जिक्र अहादीस मुबारका में आता है, और इसी तरह गैर मनकूली जायदाद के ताबिअ करते हुए भी बाज मनकूली चीजों में वक्फ जायज हो जाएगा, इनके अलावा और किसी मनकूली चीज में वक्फ जायज नहीं भाई। और याद रखो, यही कौल है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का भी, यही कौल है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का भी, वो भी फरमाते हैं कि घोड़े और असलहे के अंदर भी वक्फ जायज है, और इसी तरह गैर मनकूली जायदाद के ताबे करार देते हुए मनकूली चीजों में भी वक्फ जायज होगा और बाकी मनकूली चीजों में वक्फ जायज नहीं। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से एक और रिवायत भी आती है, उसमें वो फरमाते हैं कि वो मनकूली चीजें कि जिनके वक्फ में तआमुल जारी हो, यानी लोग इस जैसी चीजों को वक्फ करते रहते हैं, तो उनमें भी वक्फ जायज होगा, उनमें भी वक्फ जायज होगा। जैसे लोग मस्जिद के अंदर कुरान लाकर रख देते हैं और वक्फ कर देते हैं कि जो भी इसको पढ़ता रहेगा उन्हें अजर व सवाब मिलता रहेगा, या इसी तरह बाज लोग जनाजे की चारपाई वक्फ कर देते हैं, या इसी तरह जनाजे के ऊपर डालने वाला कपड़ा जो है वो वक्फ कर देते हैं, तो ये मनकूली चीजें जो हैं इनके अंदर तआमुल जारी है, लोग इस तरह वक्फ करते रहते हैं, और जब एक चीज पर लोगों का तआमुल हो तो उसकी वजह से भी कियास को तर्क कर दिया जाता है। कियास तो यह तकाजा करता है कि मनकूली चीज में वक्फ जायज ही नहीं होना चाहिए, कियास तो यह तकाजा करता है कि मनकूली चीज में वक्फ जायज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ का मुअब्बद होना यानी हमेशा के लिए होना शर्त है और मनकूली चीजें तो मुअब्बद नहीं होती। तो कियास यह तकाजा करता है कि मनकूली चीजों में वक्फ जायज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बाज मनकूली चीजों के वक्फ पर लोगों का तआमुल जारी है तो लोगों के तआमुल की वजह से भी कियास को तर्क कर दिया जाता है। लिहाजा जिन चीजों पर लोगों का तआमुल हो उन मनकूली चीजों में भी वक्फ जायज होगा। बात समझ में आ गई जी। देखिए भाई किताब पर قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ويجوز وقف العقار کہ عقار یعنی غیر منقولی جائیداد کا وقف جائز ہے لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اس لیے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے وقفوه اس عقار کو وقف کیا ہے انہوں نے اپنی غیر منقولی جائیدادوں کو وقف کیا ہے بھائی जी। वो आगे देखिए वला यजूज़ वक्फ़ मा युनक़लु व युहव्वलु और वक्फ जायज नहीं है मा युनक़लु व युहव्वलु उस चीज का जिसको नकल किया जाता है। युनक़लु और युहव्वलु का एक ही माना है, वो चीज जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता हो, यानी मनकूली चीजें मुराद हैं भाई। तो कहते हैं वला यजूज़ वक्फ़ मा युनक़लु व युहव्वलु और मनकूली चीजों का वक्फ जायज नहीं है। قال رضي الله تعالى عنه इस काला से मुराद साहिब हिदाया है। साहिब हिदाया अब वजाहत फरमाएंगे कि मतन में आया वला यजूज़ वक्फ़ मा युनक़लु व युहव्वलु मनकूली चीजों का वक्फ जायज नहीं है। साहिब हिदाया बतलाएंगे कि यह जो है अलल इतलाक इमाम साहिब का कौल है। इमाम साहब के नजदीक मुतलकन किसी मनकूली चीज का वक्फ जायज नहीं, क्योंकि वक्फ का मुअब्बद होना शर्त है और मनकूली चीज में तो ताबीद नहीं होती भाई। तो कहते हैं قال رضي الله تعالى عنه صاحب هدايه فرماتے ہیں وهذا على الارسال قول ابي حنيفه رحمه الله اور یہ على الاطلاق امام صاحب کا قول ہے۔ على الارسال ارسال اور اطلاق کا ایک معنی ہے۔ अतलक युतलिको इतलाकन या इसी तरह अरसला युरसिलु इरसालन दोनों का माना है आजाद छोड़ना। तो ये मनकूली चीजों में इमाम साहब का ये कौल है अलल इतलाक भाई, यानी इसमें कोई कैद नहीं है कि फुला मनकूली चीज में वक्फ जायज है या फुला में जायज है, बल्कि अलल इतलाक तमाम मनकूली चीजों में इमाम साहब के नजदीक वक्फ जायज नहीं है। तो कहते हैं वहादा अलल इरसाल कौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह तो ये अलल इतलाक इमाम साहब का कौल है। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं इदा वकफ ज़ैअतम बिबकरिहा व अकरतिहा व हुम अबीदुहु जाज़ा ज़ैअ बे ज़ाद के साथ ये काश्त वाली जमीन को कहते हैं जो काबिले काश्त हो, जिस पर काश्तकारी हो सके। भी बकरिहा बकर कहते हैं बैल को व अकारातिहा अकारा जमा है अकार की और अकार काश्तकार को कहते हैं वो जो जमीन में हल चलाता है जमीन को बोता है भाई। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं इदा वकफ ज़ैअतन जब किसी शख्स ने अपनी काबिले काश्त जमीन को वक्फ किया भी बकरिहा व अकरतिहा उसके बैलों और उसके काश्तकारों के साथ वहुम अबीदुहु इस हाल में कि वो काश्तकार जो है वो इसके गुलाम है जाज़ा तो ये जायज है। तो जमीन के ताबे होकर ये बैल और ये जो गुलाम हैं या और खेती बाड़ी के जो आलात हैं उनमें भी वक्फ जायज है भाई। वकदा साइरु आलातिल हिरासती और इसी तरह है खेती बाड़ी के बाकी आलात भी, यानी उनमें भी जमीन के ताबे होते हुए वक्फ जायज होगा। हिरासत भाई सा के साथ है भाई, सा हरासा यहरिसु हिरासतन का माना है खेती बाड़ी करना जमीन में हल चलाना। तो कहते हैं वकादा साइरु आलातिल हिरासती और इसी तरह है बाकी खेती बाड़ी के जो आलात हैं यानी उनमें भी वक्फ जायज है जमीन के ताबे होते हुए। लिअन्नहु तबाउन लिल अर्ज़ी इसलिए क्योंकि ये चीजें जमीन के ताबे हैं। फी तहसील मा हुवल मकसूद उस चीज के हासिल करने में जो मकसूद है, जमीन से पैदावार मकसूद होती है और उस पैदावार के हासिल करने में ये जमीन के تابع ہیں بھائی. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْأَرْضِ فِي تَحْصِيلِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ, کہ یہ چیزیں زمین کے تابع ہیں اس چیز کے حاصل کرنے میں جو مقصود ہے. وَقَدْ يَسْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا مَا لَا يَسْبُتُ مَقْصُودًا, وَقَدْ يَسْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا, اور کبھی کبھار بعض حکم جو ہیں وہ تابع ہو کر ثابت ہو جاتے ہیں. مَا لَا يَسْبُتُ مَقْصُودًا, جو مقصود ہو کر ثابت نہیں ہو سکتے. بھئی دیکھو منقولی چیز کو قصدن تو وقف کرنا جائز نہیں, لیکن زمین کے تابع ان کے اندر وقف جائز ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات بعض چیزوں کے اندر قصدن ایک حکم ثابت نہیں ہو سکتا, لیکن کسی دوسری چیز کے تابع ہوتے ہوئے ان میں وہ حکم ثابت ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں وقد یثبت من الحکم تبعا, اور کبھی کبھار حکم میں سے تابع ہو کر ثابت ہو جاتے ہیں. ما لا یثبت مقصودا, جو مقصود ہو کر ثابت نہیں ہو سکتے. کالشرب فی البیع, جیسے کہ بیع کے اندر پانی کی باری ہے. شرب کہتے ہیں پانی کی باری کو. مثلا زید اور عمر کی زمین ہے اور ایک چھوٹی سی نہر آ رہی ہے اور اسے یہ دونوں باری باری اپنی زمین کو سیراب کرتے ہیں. تو دیکھو اس پانی کی باری میں زید کا بھی حصہ ہے اور عمر کا بھی حصہ ہے. تو یہ زید اور عمر جو ہیں یہ اس پانی کی باری کو بیچنا چاہتے ہیں. نہیں بھائی, پانی کی باری کوئی وجودی چیز نہیں ہے, یہ صرف ان کا ایک حق ہے, لہذا اس کو اکیلا بیچنا جائز نہیں. لیکن زمین کے تابع وہ پانی کی اس باری کو بیچ سکتے ہیں. مثلا زید اپنی زمین بیچتا ہے تو زمین کے تابع وہ پانی کی اس باری کو بھی بیچ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں کشیر بفل بیعی, جیسے کہ پانی کی باری ہے بیع کے اندر. ول بینا افل وقفی, اور جیسے کہ عمارت ہے وقف میں. بنا بھائی عمارت کو کہتے ہیں. بھائی دیکھیں یہ عمارت جو ہے یہ منقولی چیز ہے. عمارت منقولی چیز ہے. عمارت کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے اور پھر اس کے ملبے کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. تو معلوم ہوا عمارت منقولی چیز ہے, اور آپ نے پڑھ لیا کہ منقولی چیزوں کے اندر تو وقف جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص اپنی زمین وقف کرتا ہے اور اس زمین کے اندر عمارت بھی موجود ہے تو زمین کے تابع ہو کر اس عمارت کا وقف بھی جائز ہو جائے گا. تو اصل وقف کس میں ہوگا؟ زمین میں, اور عمارت جو ہے وہ زمین کے تابع ہو کر وقف ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بات یہ چل رہی ہے کہ بعض اوقات ایک حکم جو ہے وہ تابع ہو کر تو ثابت ہو جاتا ہے لیکن مقصود ہو کر ثابت نہیں ہوتا. جیسے پانی کی باری مقصود کرتے ہوئے بیچی جائے تو پھر نہیں بیچ سکتے, لیکن زمین کے تابع اسے بیچ سکتے ہیں. عمارت جو ہے اس کا وقف مقصوداً جائز نہیں ہے, لیکن زمین کے تابع اس عمارت کا وقف بھی جائز ہے بھائی. تو کہتے ہیں کشیر بفل بیع ول بنا افل وقفی, جیسے کہ پانی کی باری ہے بیع کے اندر اور جیسے کہ عمارت ہے وقف کے اندر. و محمد رحمہ اللہ تعالی معہ فیہ, اور امام محمد رحمہ اللہ بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اس میں. امام محمد رحمہ اللہ بھی اس مسئلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ غیر منقولی کے تابع منقولی کا وقف بھی جائز ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ محمد رحمہ اللہ تعالی معہ فیہ, اور امام محمد رحمہ اللہ بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں ان منقولی چیزوں کے وقف میں. لانہ لما جاز افراد بعض المنقول بالوقف عنده فلن يجوز الوقف فيه تبعا اولا. بھائی ادھر دیکھیے, میں نے آپ کو بتلایا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے یہ زمین کے تابع یہ بیل وغیرہ کے اندر وقف جائز ہے, اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک گھوڑے اور اسلحے کا وقف بھی جائز ہے, اور امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب گھوڑے اور اسلحے کا وقف جائز ہے, حالانکہ یہ منقولی چیزیں ہیں, تو ان کا وقف علیحدہ جائز ہے, زمین کے تابع کرتے ہوئے نہیں. جب ان کا علیحدہ وقف جائز ہے, اسی طرح وہ چیزیں جن کے اندر لوگوں کا تعامل ہے, جیسے قرآن وقف کرتے ہیں, یہ جنازے کی چارپائی وغیرہ وقف کرتے ہیں, تو جب ان کو علیحدہ وقف کرنا جائز ہے تو عقار کے تابع کرتے ہوئے منقولی میں وقف بطریق اولا جائز ہوگا. تو کہتے ہیں وہ محمد رحمہ اللہ تعالی معہ فیہ, اور امام محمد رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اس میں. لانہ لما جاز افراد بعض المنقول بالوقف عنده, اس لیے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب بعض منقولی چیزوں کا وقف جدا کرنا جائز ہے. इफराद का क्या माना, जुदा करना, यानी अकेली मनकूली चीजों का वक्फ भी जायज है, घोड़े का वक्फ किया जाता है या असलहे को वक्फ किया जाता है या कुरान है, जनाजे की चारपाई है, अब देखो इनको अकेला वक्फ करना जायज है। तो जब इनको अकेला वक्फ करना जायज है तो मनकूली चीज को गैर मनकूली के ताबे वक्फ करना बतरीके औला जायज होगा। तो कहते हैं लिअन्नहु लम्मा जाज़ा इफ़्रादु बाज़िल मनकूली बिल वक्फ इंदहु, इसलिए क्योंकि जब बाज़ मनकूली चीजों का वक्फ अलहदा जायज है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, फलअन यजूज़ अल वक्फ फीहि तबअन औला, तो यह कि वो वक्फ उसमें ताबे होकर जायज हो, यह बतरीके औला होगा, ये बतरीके औला होगा। वकाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह ताला, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यजूज़ हब्सुल कुराई वस्सिलाह, कुरा भाई घोड़ों और असलहे के मजमूए को कहते हैं, लेकिन यहां असलहे का जिक्र अलग है, तो यहां कुरा से क्या मुराद है, घोड़े भाई। तो कहते हैं वकाल मुहम्मद रहमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यजूज़ हब्सुल कुराई वस्सिलाही, के घोड़ों और असलहे का हब्स जायज है, घोड़ों और असलहे का हब्स जायज है, और हब्स से मुराद है वक्फ भाई, क्योंकि वक्फ का भी क्या माना है, हब्स यानी रोकना भाई। तो कहते हैं यजूज़ हब्सुल कुराई वस्सिलाही, कि घोड़ों और असलहे का वक्फ जायज है, मानाहू इस हब्स का माना जो है, वक्फुहू फी सबीलिल्लाह, यहां से साहिब हिदाया मतन का माना बयान फरमा रहे हैं, मतन में तो आया यजूज़ हब्सुल कुराई वस्सिलाही, हब्स का लफ्ज आया, साहिब हिदाया बतला रहे हैं हब्स से मुराद वक्फ है भाई। तो कहते हैं मानाहू कि हब्स का जो माना है, वक्फुहू फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में इसको वक्फ करना है, वह अबू यूसुफ रहमतुल्लाह माहू फीही, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह भी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं इस मसले में, अला मा कालू, उस वजह से जो फुकहा ने फरमाया है भाई। ऊपर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का कौल जिक्र किया कि उनके नजदीक जमीन के ताबे बैलों का और काश्तकार गुलामों का वक्फ भी जायज है, और उस मसले में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह भी उनके साथ थे, और यहां जिक्र किया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक घोड़ों और असलहे का वक्फ जायज है, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह भी इस मसले में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं। मालूम हुआ दोनों का एक ही कौल है, दोनों का एक ही कौल है। ये दोनों चीजें जो ऊपर जिक्र हुई, घोड़े और असलहा, और दूसरा जमीन के ताबे जो है बैल वगैरह का वक्फ, इसमें दोनों का कौल एक ही है भाई। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं, वह अबू यूसुफ रहमला माहू फी ही, कि इमाम अबू यूसुफ रहमला भी इस मसले में इमाम मोहम्मद रहमला के साथ हैं, अला मा कालू, उस वजह से जो फुकहा ने फरमाया है, यानी दोनों के कौल को अलग जिक्र करने की कोई हाजत नहीं थी, दोनों का कौल अलग अलग जिक्र किया गया, लेकिन दोनों का कौल एक ही है। तवज्जो है, ऊपर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की बात जिक्र की और कहा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह उनके साथ हैं इस मसले में, अब आगे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल जिक्र किया और कहा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इस मसले में उनके साथ हैं, मालूम हुआ दोनों का कौल एक ही है भाई। ये तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का एक कौल है जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल के मुआफिक है, आगे दूसरा कौल भी उनका आगे आएगा भाई। तो कहते हैं वह अबू यूसुफ रहमतुल्लाह माहू फीही अला मा कालू, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इस वक्त के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं, बवजह उसके जो फुकहा ने फरमाया है, वह इस्तेहसान, और यह इस्तेहसान है, ये जो घोड़े और असलहे का वक्फ जायज करार दिया गया है ये इस्तेहसान है, कियास तो ये तकाजा करता है इनका वक्फ जायज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ का मुअब्बद होना जरूरी है, हमेशा के लिए होना जरूरी है, और घोड़ा और असलहा तो मुअब्बद नहीं है। तो कहते हैं वह हुआ इस्तेहसान, और ये इस्तेहसान है, वल कियास अल्ला यजूज अलीमा बैन्नाहु मिन कब्लू, और कियास तो यह है कि यह जायज नहीं होना चाहिए उस वजह से जो हमने माकबल में बयान कर दिया कि वक्फ का मुअब्बद होना शर्त है भाई। आगे देखिए वजहुल इस्तेहसानी, अब इस्तेहसान की वजह जिक्र कर रहे हैं भाई। मैंने आपको बतलाया था कि इस्तेहसान जो है उस मुत्तफकुन अलैह दलील को कहते हैं जिसके मुकाबले में कियास आए, मसलन कियास एक बात का तकाजा कर रहा है और कुरान की आयत से दूसरी बात का पता चल रहा है, तो इस आयत को इस्तेहसान कहेंगे। इस आयत को इस्तेहसान कहेंगे या हदीस से एक बात का पता चल रहा है और कियास दूसरी बात का तकाजा कर रहा है तो इसको भी इस्तेहसान कहेंगे। ये जो हदीस है ये क्या है? इस्तेहसान। तो इस्तेहसान उस मुत्तफकुन अलैह दलील का नाम है जिसके मुकाबले में कियास है। तो आयत को इस्तेहसान तब कहते हैं जब उसके मुकाबले में कियास हो, हदीस को इस्तेहसान तब कहते हैं जब उसके मुकाबले में कियास हो, लेकिन ज्यादातर इस्तेहसान का इस्तेमाल जो है वो कियास खफी के लिए होता है। कियास खफी मैंने बतलाया था, एक कियास खफी है एक कियास जली है। कियास खफी वो है जिसमें बात गहरी होती है, खूब गौर करना पड़ता है फिर इंसान उस बात तक पहुंचता है, और कियास जली वो है जहां बात खूब जाहिर होती है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, इंसान फौरन उस बात तक पहुंच जाता है। भाई तो इस्तेहसान जो है वो उस मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील को कहते हैं जिसके मुकाबले में कियास आए, लेकिन ज्यादातर इस्तेहसान जो है वो कियास खफी पर बोला जाता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बतलाया था कि कियास खफी को भी इस्तेहसान तब कहते हैं जब उसके मुकाबले में कियास जली हो। कियास जली एक बात का तकाजा कर रहा है, कियास खफी दूसरी बात का तकाजा कर रहा है, तो इस कियास खफी को इस्तेहसान कहेंगे क्योंकि इसके मुकाबले में कियास जली मौजूद है। लेकिन अगर कियास खफी के मुकाबले में कियास जली मौजूद नहीं, फिर जितना मर्जी गहरा कियास हो उसको कियास ही कहते हैं, इस्तेहसान नहीं कहते। तो हासिल कलाम यह है कि इस्तेहसान के मुकाबले में कियास का होना जरूरी है, चाहे आयत हो, चाहे हदीस हो, चाहे कियास खफी हो, लेकिन इनके मुकाबले में कियास होगा तो फिर ही इनको इस्तेहसान कहेंगे। चुनांचे इसीलिए देखिए यहां आया वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की जो वजह है अल आसारुल मशहूरतु फीही, वो इसके अंदर मशहूर अहादीस हैं। भाई वो इसके अंदर मशहूर अहादीस हैं। देखो अहादीस को इस्तेहसान कहा जा रहा है, बात समझ में आ गई। और इन अहादीस को इस्तेहसान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके मुकाबले में कियास आ रहा है। अगर इनके मुकाबले में कियास ना होता तो इन अहादीस को इस्तेहसान भी ना कहते। तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह जो है अल आसारुल मशहूरतु फीही, वो इसके बारे में मशहूर अहादीस हैं। मिन्हा कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, उन अहादीस में से हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल है कि आपने फरमाया व अम्मा खालिदुन फकद हबसा अदरुअन व अफरासन लहू फी सबीलिल्लाहि तआला। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया व अम्मा खालिदुन, तो खालिद जो है फकद हबसा ऐ फकद वकफा, हबस किस माने में है? वक्फ के माने में है। तो हुजूर फरमाते हैं व अम्मा खालिदुन, तो खालिद जो है फकद हबसा, तहकीक उसने वक्फ किया है, अदरुअन व अफरासन लहू, अपनी जिरहें और घोड़े। अदरु जमा है दिरउन की, और दिरउन कहते हैं लोहे की कमीज। भाई वो जो जंगों के अंदर जाली वाली वो लोहे की कमीज पहनी जाती थी तलवार के वार से बचने के लिए, उसको दिरउन कहते हैं, और जमा क्या है? अदरु भाई, और इसी तरह इसकी जमा दुरुअ भी आती है। भाई तो हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि खालिद इब्ने वलीद जो हैं फकद हबसा, तहकीक उन्होंने वक्फ किया है, अदरुआउं व अफरासन लहू, अपने घोड़ों और जिरहों को, फी सबीलिल्लाहि तआला, अल्लाह के रास्ते में। ये भाई रिवायात में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा जकात वसूल करने के लिए। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ लाए तो उन्होंने सदका देने से इनकार कर दिया। इसी तरह बाज ने और ने भी इनकार किया सदका देने से। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वापस तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहि सलाम को बतलाया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाने लगे कि खालिद इब्ने वलीद से तुम अगर सदका तलब कर रहे हो ये तो तुम जुल्म कर रहे हो, उन्होंने तो पहले ही अपनी इतनी जिरहें और इतने घोड़े अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिए हैं। भाई यानी वो तो पहले ही अदा कर चुके हैं। तो इस हदीस से पता चला असलहा और घोड़े वक्फ करना जायज है। भाई तो कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया व अम्मा खालिदुन, तो खालिद इब्ने वलीद जो है फकद हबसा अदरुअन व अफरासन लहू, तो यहां भी हबसा का क्या माना है? वकफा। भाई فقد حبس ادرعا وافراسا له, تحقیق انہوں نے تو اپنی زرہیں اور اپنے گھوڑے جو ہیں وہ وقف کیے ہیں, فی سبیل اللہ تعالی, اللہ کے راستے میں. تو حدیث یہیں تک ہے, حضور علیہ السلام کے الفاظ یہیں تک ہیں. آگے دوسری حدیث آ رہی ہے, وطلحة رضی اللہ تعالی عنہ حبس دروعہ فی سبیل اللہ تعالی, اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبس دروعہ فی سبیل اللہ تعالی, انہوں نے اپنی زرہیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں وقف کی تھیں. وَيُرْوَى وَأَكْرَعَهُ, یہ میری کتاب میں ہے, وَيُرْوَى وَأَكْرَعَهُ, اکراعہ سے پہلے واو موجود ہے, یاد رکھو یہ درست نہیں ہے. ہدایہ کے دیگر نسخوں میں یہاں واو نہیں ہے اور یہاں واو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ صاحب ہدایہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری, وَطَلْحَةُ رضی اللہ تعالی عنہ حبس دروعہ فی سبیل اللہ تعالی, اس حدیث کی بعض روایات میں دروعہ کی جگہ اکراعہ کا لفظ آیا کہ طلحہ نے حبس اکراعہ فی سبیل اللہ تعالی, انہوں نے اپنے گھوڑے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں وقف کیے. بھائی تو کہتے ہیں وطلحة رضی اللہ تعالی عنہ حبس دروعہ فی سبیل اللہ تعالی, اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہیں اللہ کے راستے میں وقف کی. ویوروا اکراعہ, اور دروعہ کی جگہ اکراعہ بھی روایت کیا گیا ہے. والقراع الخیل, یہاں سے صاحب ہدایہ قراع کا معنی بیان فرما رہے ہیں, کہتے ہیں والقراع الخیل, اور قراع جو ہے وہ گھوڑے ہیں. یاد رکھو خیل جو ہے, خیل ایک گھوڑے کو نہیں کہتے بلکہ گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں والقراع الخیل, اور قراع جو ہے وہ گھوڑے ہیں. ویدخل فی حکمہ الابل, اور اسی کے حکم میں اونٹ بھی داخل ہیں. یعنی جیسے گھوڑوں کا وقف جائز ہے تو اس حکم میں اونٹ بھی داخل ہیں. تو کہتے ہیں ویدخل فی حکمہ الابل, اور ان گھوڑوں کے حکم میں اونٹ بھی داخل ہیں, یعنی ان کو بھی وقف کیا جا سکتا ہے. لأن العرب یجاہدون علیہا, اس لیے کیونکہ عرب جو ہیں ان اونٹوں پر بھی جہاد کیا کرتے تھے. وَكَذَا السِّلَاحُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا, اور اسی طرح وہ اسلحہ بھی ہے جو ان پر لادا جاتا ہے, یعنی اسلحے کو وقف کرنا بھی صحیح ہے جو ان پر لادا جاتا ہے. آگے دیکھیے بھائی, وعن محمد رحمه الله تعالى انه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات. بھائی اب امام محمد رحمہ اللہ کا دوسرا قول آ گیا. امام محمد رحمہ اللہ کا پہلا قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تھا, اور دوسرے قول کے مطابق امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منقولی چیزیں جن کے وقف کرنے میں لوگوں کا تعامل جاری ہے, لوگ اس طرح کی چیزیں وقف کرتے رہتے ہیں, تو ان میں بھی وقف جائز ہوگا, جیسے قرآن ہے اور جنازے کی چارپائی وغیرہ. بھائی تو کہتے ہیں وعن محمد رحمہ اللہ تعالی, اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ یجوز وقف ما فیہ تعامل, کہ وقف جائز ہے ان چیزوں میں بھی جن کے اندر تعامل ہے. من المنقولات, یعنی کہ منقولی چیزیں, یہ من المنقولات بیان ہے, ما فیہ تعامل وہ چیزیں جن میں تعامل ہے. من المنقولات یعنی کہ منقولی چیزیں, تو یہ من المنقولات کس کا بیان ہے؟ ما فیہ تعامل کا. لہذا ترجمے کے اندر یہ ما کی جگہ المنقولات کا لفظ لے آئیں تو بہترین ترجمہ ہو جائے گا. دیکھیے بھائی کہتے ہیں وعن محمد رحمہ اللہ, اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے, انہ یجوز وقف ما فیہ تعامل من المنقولات, کہ وقف جائز ہے ان منقولی چیزوں میں بھی جن میں لوگوں کا تعامل ہے. كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. بھائی اب وہ کچھ چیزیں ذکر کر دیں جن میں لوگوں کا تعامل جاری ہے, وہ ان چیزوں کو وقف کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں فأسن, فأس کہتے ہیں بھائی کلہاڑا, بھائی کلہاڑا جس کے ذریعے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں بھائی. اور اسی طرح مرن, مرن کہتے ہیں پھاوڑا بھائی, یہ ایک قسم کی بڑی کدال ہے بھائی. کدال وہ جس کی دونوں جانب نوکدار ہوتی ہے اور سخت زمین ہو تو اس کو کدال کے ذریعے کھودتے ہیں, تو اسی طرح جو بڑی کدال ہو اس کو مرون کہتے ہیں بھائی. اسی طرح قدوم, بھائی قدوم یہ ترخان کا ایک آلہ ہے, ترخان بھائی بڑھئی جو لکڑی سے چیزیں بناتا ہے, اس کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے وہ لکڑیوں کو چھیلتا ہے اور ان کو ہموار کرتا ہے, اس کو قدوم کہتے ہیں. اردو میں اس کو تیشا یا بسولا کہتے ہیں, ترخان کا تیشا یا بسولا. तो अरबी में उसको कदूम कहते हैं, मीनशार भाई, मीनशार आरी को कहते हैं जिसके जरिए तरखान लकड़ी को काटता है भाई। वल जिनाजती, और जिनाजा जो है ये जनाजे की चारपाई को कहते हैं। वह सियाबिहा, और सियाब यानी वो जनाजे की चारपाई का जो कपड़ा है, मैयत के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है। वल कुदूरी, कुदूर जमा है किदर की, और किदर हांडी को कहते हैं जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं। वल मराजिल, मराजिल जमा है मिर्जल की, और मिर्जल भी हांडी को कहते हैं। तो किदर भी हांडी और मिर्जल भी हांडी। अलबत्ता बाद शारहीन ने फिर फर्क किया है कि किदर जो है वो आम है, चाहे वो मिट्टी की हांडी हो, चाहे तांबे या पीतल वगैरह की हांडी हो, और जबकि मिर्जल जो है वो पीतल या तांबे की जो हांडी है उसको मिर्जल कहते हैं। और मसाहिफ जमा है मुसहफ की, और मुसहफ जो है वो कुरान को कहते हैं। तो ये वो सब मनकूली चीजें हैं कि इनके वक्फ में तआमुल जारी है, लोग ये चीजें वक्फ करते रहते हैं। बाज लोग क्या करते हैं, कुल्हाड़ा आरी वगैरह ये चीजें देहात में मखसूस जगह पर लाकर रख देते हैं, तो जिस किसी को भी जरूरत होती है इनको ले जाता है, इस्तेमाल करता है और फिर वापस लाकर रख देता है। तो इन चीजों के वक्फ में लोगों का तआमुल जारी है, लिहाजा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं इनका वक्फ भी जायज है भाई। तो कहते हैं कल फासी, जैसे के कुल्हाड़ी है, वल मर्री, और जैसे के फावड़ा है, वल कदूमी, और जैसे के तेशा है, वल मीनशारी, और जैसे के आरी है, वल जिनाजती व सियाबिहा, और जैसे जनाजे की चारपाई है और उसका कपड़ा है, वल कुदूरी वल मराजिली, और जैसे के हांडियां हैं, जैसे के हांडियां हैं, वल मसाहिफी, और जैसे के कुरान हैं, कि इनके वक्त में लोगों का तआमुल जारी है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इनके अंदर भी वक्फ जायज है, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये मनकूली चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है, लिहाजा कियास ये तकाजा करता है कि इनके अंदर वक्फ जायज नहीं होना चाहिए। और कियास को सिर्फ नस की वजह से छोड़ा जाता है, कियास को नस की वजह से छोड़ा जाता है, नस के अंदर जब एक बात आ जाए तो फिर कियास को नहीं देखा जाता, लेकिन यहां इन चीजों के अंदर तो नस नहीं है, लिहाजा यहां कियास पर ही अमल किया जाएगा और इन चीजों का वक्फ जायज नहीं होगा। तो कहते हैं वाइंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाहु ताला ला यजूज़ु, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नजदीक इन चीजों का वक्फ जायज नहीं है। لأن القياس إنما يترك بالنص, इसलिए क्योंकि कियास जो है उसको नस की वजह से छोड़ा जाता है। والنص ورد في القراع والسلاح, और नस जो है वो तो सिर्फ घोड़ों और असलहे के बारे में आई है। فيقتصر عليه, लिहाजा ये हुक्म भी इसी नस पर ही बंद रहेगा और मनकूली चीजों को इन पर कियास नहीं किया जाएगा। वह मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला यकूल, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल कियास कद युतरकु बितआमुली, कि कियास को कभी कभार लोगों के तआमुल की वजह से भी छोड़ दिया जाता है, लोगों के दरमियान एक चीज पर अमल जारी हो तो उसकी वजह से भी कियास को तर्क कर दिया जाता है, और लोगों में इन चीजों पर अमल जारी है, लिहाजा यहां भी कियास को तर्क कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल कियास कद युतरकु बितआमुली, कि कियास जो है उसको कभी कभार तआमुल की वजह से छोड़ दिया जाता है। कमा फिल इस्तिस्नाई, जैसे कि किसी चीज का बनवाना, इस्तिस्ना भाई किसी चीज के बनाने को तलब करना, यह सीन किस लिए है, ये जो इस्तिस्ना के शुरू में सीन है यह सीन किस लिए है, तलब के लिए है। तो इस्तिस्ना का माना है किसी चीज के बनाने को, किसी चीज की सनअत को तलब करना, यानी ऑर्डर पर कोई चीज बनवाना। मसलन आप मोची के पास जाते हैं और आप अपने पांव का नाप उसे देते हैं कि इस नाप के मुताबिक मुझे जूते बना दीजिए, और आपके और मोची के दरमियान उन जूतों की बैह हो जाती है, और कुछ पैसे आप एडवांस में ही देकर आ जाते हैं, तवज्जो है, तो इसको इस्तेसना कहते हैं, ये जो आर्डर पर चीज बनवाई जाती है। और याद रखो कियास तो ये तकाजा करता है, ये जायज नहीं होना चाहिए, ये इस्तेस्ना जायज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज की बैं मोची के साथ कर रहे हैं, जिस जूते की बैं आप मोची के साथ कर रहे हैं, वो जूते तो अभी मादूम हैं, उनका वजूद ही नहीं है, और मादूम चीज की बैं तो जायज नहीं होती। लिहाजा कयास ये तकाजा करता है कि इस्तेस्ना जायज नहीं होना चाहिए। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लोगों का तआमुल जारी है, लोग इस तरह करते रहते हैं, तो तआमुल की वजह से कयास को तर्क कर दिया गया। तो कहते हैं वह मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला यकूलो, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल कियास कद युतरकु बितआमुली, कि कियास जो है उसको कभी कभार लोगों के तआमुल की वजह से छोड़ दिया जाता है। कमा फिल इस्तिस्नाई, जैसे किसी चीज को ऑर्डर पर बनवाने में है, जैसे किसी चीज के बनवाने को तलब करने में है। वक़द वुजिदा तआमुलु फी हादिही अशियाई, और तहकीक तआमुल पाया गया है इन चीजों के अंदर, ये जो ऊपर जिक्र हो गई, लिहाजा तआमुल की वजह से इनका वक्फ जायज होगा। भाई वअन नुसैर इब्ने यहया, यहां से साहिब हिदाया जो हैं, यहां से साहिब हिदाया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की ताईद फरमा रहे हैं कि इन मनकूली चीजों में भी वक्फ जायज होना चाहिए। चुनाचे फरमाते हैं कि नुसैर इब्ने यहया ये अहनाफ के बड़े फुकहा में से हैं, और ये शागिर्द हैं हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह के, और हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह ये शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के। तो मालूम हुआ ये जो नुसैर इब्ने यहया हैं ये इमाम साहब के शागिर्दों के शागिर्द हैं और बड़े फुकहा में से हैं, और इन्होंने कहते हैं अपनी तमाम दीनी किताबें वक्फ फरमा दी थी कुरान पर कयास करते हुए, कि जिस तरह कुरान का वक्फ जो है तआमुल की वजह से जायज है, इसी तरह दीनी किताबों का वक्फ भी जायज होगा। भाई तो कहते हैं वह अन नुसैर इब्ने यहया, और नुसैर इब्ने यहया रहमहुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु वक़फ़ कुतुबहू, कि उन्होंने अपनी किताबों को वक्फ फरमा दिया था, इल्हाकन लहा बिल मसाहिफी, इनको कुरान के साथ मिलाते हुए यानी कुरान पर कयास करते हुए। वहादा सहीहुन, और साहिब हिदाया फरमाते हैं वहादा सहीहुन, कि ये नुसैर इब्ने यहया का कौल सही है, और याद रखो इसी पर फतवा है कि किताबों वगैरह का वक्फ भी जायज है। भाई तो कहते हैं वहादा सहीहुन, और ये सहीह है, लिअन्न कुल्ल वाहिदिन युमसकुल दीन, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक को थामा जाता है दीन के लिए। अमसक युमसिको इमसाक का माना है किसी चीज को थामना और हाथ से उठाना, तो ये जिस तरह कुरान को कभी पढ़ने के लिए उठाया जाता है, कभी दूसरे को सिखाने के लिए उठाया जाता है, और कभी सीखने के लिए उठाया जाता है, इसी तरह दीनी किताबें भी हैं, इनको कभी पढ़ने के लिए उठाया जाता है, कभी दूसरे को सिखाने के लिए, और कभी सीखने के लिए। तवज्जो है, आगे लफ्ज आएगा तालीम, अल्लामा युअल्लिमु तालीम का माना है दूसरे को सिखाना, जैसे उस्ताद शागिर्दों को सिखाता है, तो उस्ताद की निस्बत से है यह तालीम, और शागिर्द सीख रहे हैं तो इसको कहते हैं ताल्लुम, इसको क्या कहते हैं ताल्लुम। तो ये कुरान और दीनी किताबें जो हैं इनको दीन की वजह से उठाया जाता है तालीम देने के लिए या सीखने के लिए या पढ़ने के लिए। भाई तो कहते हैं अन नकुल लवाहिदीन, इसलिए क्योंकि कुरान और ये जो दीनी किताबें हैं इनमें से हर एक जो है युम सकुलित दीनी, इनको उठाया जाता है दीन के लिए, तालीमन दूसरों को सिखाने के एतबार से, व ताल्लुमन और सीखने के एतबार से, व किराअतन और पढ़ने के एतबार से। व अक्सर फुकहा इल अमसार अला कौल मुहम्मदिन रहमहुल्लाह, और अक्सर शहरों के जो फुकहा हैं वो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के कौल पर हैं, यानी आम फुकहा जो हैं वो भी इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के कौल को तरजीह देते हैं, और इन मनकूली चीजों में भी वक्फ को जायज करार देते हैं लोगों के तआमुल की वजह से। तो कहते हैं वह अक्सर फुकहा इल अमसारी, और शहरों के अक्सर फुकहा जो हैं अला कौल मुहम्मद रहमहुल्लाह, व इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के कौल पर हैं। वमा ला तआमुल फीही ला यजूज़ इंदना वक्फुहू, और याद रखो जिन चीजों के अंदर लोगों का तआमुल नहीं है उन मनकूली चीजों का वक्फ भी हमारे नजदीक जायज नहीं है। तो कहते हैं वमा ला तआमुल फीही, और वो मनकूली चीजें जिनके वक्फ में लोगों का तआमुल नहीं है, ला यजूज़ इंदना वक्फुहू, तो उनका वक्फ हमारे नजदीक जायज नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए वकाल शाफिई रहमहुल्लाह ताला कुल्लु मा युम्किनुल इंतिफाउ बिही मा बकाई असलिही व यजूज़ु बैउहू यजूज़ु वक्फुहू, अब इमाम शाफी रहमतुल्ला का कौल आ गया। इमाम शाफी रहमतुल्ला फरमाते हैं हर उस मनकूली चीज का वक्फ जायज है जिसमें दो शर्तें पाई जाए, हर उस मनकूली चीज का वक्फ जायज है जिसमें दो शर्तें पाई जाएं। एक शर्त यह कि उस चीज के बाकी रहते हुए उसे नफा उठाना मुमकिन हो, उस चीज के बाकी रहते हुए उसे नफा उठाना मुमकिन हो। याद रखो ये जो चीजों से हम नफा उठाते हैं, बास चीजों से हम इस तरह नफा उठाते हैं कि वो बाकी रहती हैं और बास चीजों से हम इस तरह नफा उठाते हैं कि वो खत्म हो जाती हैं। मसलन देखो आपके पास दिरहम और दीनार हैं, आप इनसे नफा उठाना चाहते हैं तो आपको ये दिरहम और दीनार खर्च करने पड़ेंगे, इनके जरिए आप अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकते हैं। तो दिरहम और दीनार से जब भी फायदा उठाया जाएगा इनको खर्च करना पड़ेगा, यानी ये आपके पास बाकी नहीं रहेंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे। या इसी तरह खाना जो हम रोजाना खाते हैं, ये खाना भी इससे भी हम नफा उठाते हैं, लेकिन इसको हम खाएंगे तब ही हम इससे नफा उठा सकते हैं, और जब हम खाने को खाएंगे वो तो खत्म हो जाएगा। तो बास चीजों से नफा उठाया जाता है तो वह बाकी नहीं रहती, और बास चीजें वो हैं कि उनसे बाकी रहते हुए भी नफा उठाया जा सकता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप सफर करना चाहते हैं, आप सफर करके वापस आ जाते हैं, देखो गाड़ी उसी तरह मौजूद है, नफा उठाया आपने फिर भी वो गाड़ी बाकी है। या आप ये जो कपड़े पहनते हैं इससे आप नफा उठाते हैं, अपने बदन को ढांपते हैं या ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करते हैं और फिर नफा उठा लिया और बाद में भी ये कपड़े बाकी हैं भाई। तो बास चीजों से नफा उठाया जाता है तो वो खत्म हो जाती हैं, और बास चीजों से नफा उठाया जाता है वो फिर भी बाकी रहती हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हर उस मनकूली चीज का वक्फ जायज है कि उसके बाकी रहते हुए उससे नफा उठाना मुमकिन हो, और दूसरी शर्त यह है कि उसका बेचना जायज हो, उसका बेचना जायज हो। तो जिस मनकूली चीज में भी ये दो शर्तें पाई जाएंगी उसका वक्फ जायज है। बात समझ में आ गई। देखिए भाई वकाल शाफी रहमहुल्लाह ताला, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कुल्लु मा यमकिनुल इंतिफाउ बिही, कि हर वो चीज की जिसे नफा उठाना मुमकिन हो, मा बका असलिही, उसकी असल के बाकी रहते हुए, उसके असल के बाकी रहते हुए उसे नफा उठाना मुमकिन हो, वह यजूज़ बैउहू, और उसकी बै भी जायज हो, तो यजूज़ वक्फुहू, तो इस तरह की मनकूली चीज का वक्फ जायज है। तवज्जो है। तो ये जो पहली शर्त लगाई कि उस चीज की असल बाकी रहे, इसके जरिए एहतराज है दिरहम और दीनार से कि दिरहम और दीनार का वक्फ जायज नहीं, क्योंकि उनसे नफा उठाया जाए तो वह बाकी नहीं रहते, और नीज उसका बेचना भी जायज हो, इसके जरिए दरअसल एहतराज है हमल की बै से। अरब जो है बाज औकात ऊंट या घोड़े के हमल की भी बै कर लिया करते थे, ऊंट या घोड़े के हमल के भी बै कर लिया करते थे, लेकिन शरअन हमल की बै जायज नहीं, इसलिए क्योंकि मालूम नहीं कि जानवर का जो पेट फूला हुआ है यह हमल की वजह से है या किसी बीमारी वगैरह की वजह से है, तो लिहाजा हमल का वजूद यकीनी नहीं, लिहाजा उसकी बै भी जायज नहीं, जायज नहीं। इसी तरह याद रखो ये जो कैद लगाई कि उसका बेचना भी जायज हो, इसके जरिए उम्मे वलद के वक्फ से एहतराज है, क्योंकि उम्मे वलद का बेचना भी जायज नहीं। उम्मे वलद वो बांदी जिससे आका की औलाद हुई और आका ने कह दिया ये मेरी औलाद है, तो अब ये बांदी आका की उम्मे वलद बन गई और आका के मरने के बाद इसने आजाद होना है और उम्मे वलद को बेचना जायज नहीं, वरना तो इसका हक आजादी जाया होता है भाई। बात समझ में आ गई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने ये जो दूसरी शर्त लगाई वह यजूज़ बैउहू, ये हमल को और उम्मे वलद को निकालने के लिए है कि उनका वक्फ जायज नहीं है। तो कहते हैं कि उसकी असल के बाकी होते हुए उसे नफा उठाना मुमकिन हो और उसको बेचना मुमकिन हो तो यजूज़ वक्फुहू, इस तरह की चीज का वक्फ जायज है। लिअन्नहु युमकिनु लिंतिफाउ बिही, इसलिए क्योंकि इस तरह की चीज से नफा उठाना मुमकिन है, इस तरह की चीज से नफा उठाना मुमकिन है कि एक के बाद दूसरा नफा उठाए, तीसरा नफा उठाए, चौथा नफा उठाए, तो इस तरह की चीज जो बाकी रहने वाली है उससे दूसरे लोगों का नफा उठाना मुमकिन है। फअशबहल आकार अवल कुरा अवस सिलाहा, तो लिहाजा ये चीजें मुशाबे हो गई आकार के, और नीज ये चीजें मुशाबे हो गई कुरा और सिलाह के। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जो गैर मनकूली जायदाद है यानी आकार, इससे भी नफा उठाया जाता है और यह बाकी रहती है, और नीज इसका बेचना भी जायज है। तो जब ये दोनों वसफ किसी मनकूली चीज में आ गए तो वो मनकूली चीज भी आकार की तरह हो गई, और आकार के अंदर तो बिल इतफाक वक्फ जायज है तो उस मनकूली चीज में भी वक्फ जायज होगा। और नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किसी मनकूली चीज में जब ये दो वसफ पाए जाएंगे तो वो घोड़ों और असलहे की तरह हो गई, जैसे घोड़े और असलहा जो है उनके बाकी रहते हुए उनसे नफा उठाना भी जायज और उनको बेचना भी जायज। तो किसी और मनकूली चीज में जब ये वसफ आ गए तो ये भी घोड़े और असलहे की तरह हो गई, और घोड़े और असलहे का वक्फ तो जायज है तो उस मनकूली चीज का वक्फ भी जायज होगा। मालूम हुआ इमाम शाफी रहमतुल्लाह वो मनकूली चीजें जिनमें ये दो वसफ पाए जाएं उनको कियास करते हैं आकार पर, और नीज वो इनको कियास करते हैं कुराह और असलहे पर, यानी घोड़ों और असलहे पर। बात समझ में आ गई? तो ये माना है फअशबहल आकार अवल कुरा अवल सिलाह, तो ये चीजें मुशाबे हो गई गैर मनकूली जायदाद के और घोड़ों और असलहे के। वलना, अब हमारी दलील आ गई। हम कहते हैं नहीं, आम मनकूली चीजों को आप आकार पर या कुरा और सिलाह पर कियास नहीं कर सकते। वलना, हमारी दलील यह है कि अनल वक्फ फीही ला यतअब्बदु मिनहु, कि इन चीजों के अंदर जो वक्फ है ला यतअब्बदु मिनहु वो वाकिफ की तरफ से मुअब्बद नहीं हो सकता। अलामा बयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। हम कहते हैं भाई वक्फ मुअब्बद होना चाहिए, वक्फ मुअब्बद होना चाहिए और आकार भी मुअब्बद होती है, और बाकी घोड़ा और असलहा उसके अंदर जो वक्फ जायज है वो खिलाफुल कियास अहादीस मुबारका की वजह से है। और ये जो ऊपर और चीजें हमने जिक्र की, कुरान है, जनाजे की चारपाई वगैरह है, इनके अंदर भी वक्फ जायज है वो लोगों के तआमुल की वजह से है, जबकि और मनकूली चीजें जो हैं ना तो उनमें अहादीस वारिद हुई हैं और ना उनमें लोगों का तआमुल है, लिहाजा उनके अंदर वक्फ जायज नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वाला ना, हमारी दलील यह है कि अनल वक्फ फीही, कि इन मनकूली चीजों के अंदर जो वक्फ है ला यतअब्बदु मिनहु वो वाकिफ की तरह से मुअब्बद नहीं हो सकता। अला मा बयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि मुअब्बद होना शर्त है। फसारकत दराहिमी व दनानीरी, तो बाकी चीजें जो हैं वो दिरहम और दीनार की तरह हो गई, और दिरहम और दीनार में तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक भी वक्फ जायज नहीं, तो बाकी मनकूली चीजों में भी वक्फ जायज नहीं होगा। तो कहते हैं फसारकत दराहिमी व दनानीरी, तो बाकी चीजें जो हैं दराहिम और दनानीर की तरह हो गई। बखिलाफ अलआकार, बखिलाफ गैर मनकूली जायदाद के वो हमेशा रहने वाली है, लिहाजा आप मनकूली चीजों को आकार पर कियास नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में फर्क है। आकार हमेशा रहने वाली है और बाकी मनकूली चीजें हमेशा रहने वाली नहीं। और नीज आप बाकी मनकूली चीजें जो हैं उनको कुरा और असलहे पर भी कियास नहीं कर सकते, क्योंकि कुरा और असलहे के अंदर तो अहादीस आई हैं लेकिन और मनकूली चीजों में तो अहादीस नहीं आई। और नीज आप आम मनकूली चीजों को कुरान पर या जनाजे की चारपाई वगैरह पर भी कियास नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कुरान और जनाजे की चारपाई वगैरह है इनके अंदर तो लोगों का तआमुल है और बाकी मनकूली चीजों में तो लोगों का तआमुल भी नहीं है भाई। तो कहते हैं बेखिलाफ अलआकार, बेखिलाफ आकार के, क्योंकि वो तो हमेशा रहने वाली है। वला मुआरिजा मिन हैसु समय, तवज्जो है भाई ये इबारत पे नजर रखिए, यहां जरा इबारत मुश्किल है। वला मुआरिजा मिन हैसु समय, और कोई मुआरिज भी नहीं है समा के एतबार से। वला मिन हैसु तआमुली, और न तआमुल के एतबार से। भाई इधर देखिए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने आम मनकूली चीजों को कियास किया था कुराह और असलहे पर, तो हम कहते हैं कुरा और असलहा जो है उसके अंदर तो वक्फ खिलाफुल कियास नस की वजह से जायज है, और बाकी आम मनकूली चीजों में तो कोई नस जिक्र नहीं है। तवज्जो है, तो वही जिक्र कर रहे हैं। वला मुआरिजा मिन हैसु समय, और बाकी मनकूली चीजों में समा के एतबार से कोई मुआरिज नहीं है। घोड़े और असलहा उनका वक्फ जायज है, कियास तो यह तकाजा करता है कि इनका वक्फ जायज नहीं होना चाहिए था, लेकिन खिलाफुल कियास हमने इसमें वक्फ को जायज कहा। किसकी वजह से? अहादीस की वजह से, क्योंकि यहां अहादीस जो है वो कियास के मुआरिज हैं, कियास के मुकाबिल हैं भाई। लेकिन आम मनकूली चीजों में तो कियास के मुकाबिल कोई हदीस वगैरह नहीं, लिहाजा आप बाकी चीजों को आप घोड़ों और असलहे वाला हुकाम नहीं दे सकते। यह माना है वला मुआरिज़ा मिन हैसु समई, और आम मनकूली चीजें जो हैं उनमें तो कियास का कोई मुआरिज नहीं है समा के एतबार से, यानी उनके बारे में कोई हदीस वगैरह नहीं सुनी गई भाई। वला मिन हैसु तआमुली, और नीज आम मनकूली चीजों के अंदर तो तआमुल के एतबार से भी कियास के मुकाबिल कोई चीज नहीं है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वला मुआरिज़ा मिन हैसु समई, और आम मनकूली चीजों के अंदर तो समा के एतबार से यानी सुनने के एतबार से कोई मुआरिज भी मौजूद नहीं, यानी कोई नस नहीं है। वला मिन हैसु तआमुली, और आम मनकूली चीजों के अंदर तो तआमुल के एतबार से भी कोई मुकाबिल मौजूद नहीं, कियास को कोई मुकाबिल मौजूद नहीं, लिहाजा उनमें वक्फ जायज नहीं होगा। फबकिया अला असलिल कियासी, तो आम मनकूली चीजें जो हैं वो असल कियास पर बाकी रहेंगी, और कियास तो ये तकाजा करता है ये चीजें मुअब्बद नहीं, लिहाजा इनमें वक्फ भी जायज नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, वहादा ली अन्नल आकार आयता अब्बदू, यहां से बतला रहे हैं साहिब हिदाया, मजीद वजाहत फरमा रहे हैं कि और चीजों को आकार और कुरा और असलहे के साथ नहीं मिलाया जा सकता। वजह यह कि आकार हमेशा रहने वाली है, और घोड़े और असलहा वो तो जिहाद में काम आते हैं, जो दीन का आला शोबा है भाई, दीन का आला शोबा है, लिहाजा आकार में और ये जो घोड़े और असलहे हैं इनके अंदर कुर्बत वाला माना ज्यादा है दूसरी चीजों के मुकाबले में, लिहाजा और चीजों को इनका हुकाम नहीं दिया जा सकता। तो कहते हैं वहादा, और ये इसलिए यानी और चीजों को इनके साथ नहीं मिला सकते, ले अन्नल आकार आयता अब्बदू, इसलिए क्योंकि गैर मनकूली जायदाद वो हमेशा रहती है। वल जिहाद सनामुद्दीनी, और जिहाद जो है वो दीन का आला हिस्सा है। याद रखो सनाम कहते हैं ऊंट के कोहान को, इसी तरह हर चीज का जो ऊपर वाला हिस्सा है आला हिस्सा है उसको भी सनाम कहते हैं। तो कहते हैं वल जिहाद सनामुद्दीनी, और जिहाद जो है वो दीन का आला हिस्सा है। फकान मानल कुर्बती फी हिमा अकवा, तो इन चीजों के अंदर कुर्बत वाला माना ज्यादा कवि है। फला यकून गैरुहुमा फी मानाहुमा, तो इनके अलावा और चीजें जो हैं वो इनके माना में नहीं हो सकती, लिहाजा इनमें तो वक्फ जायज होगा और चीजों में वक्फ जायज नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इदा सहल वक्फुलम यजुज बैउहू वला तमलीकुहू। भाई अब आगे आपको बतलाएंगे कि जब वक्फ सही हो जाए, और सही होने से मुराद यह है जब लाजिम हो जाए, वक्फ लाजिम हो जाए, तो फिर न उसको बेचना जायज है और न किसी दूसरे को उसका मालिक बनाना जायज है। ना इसको बेचना जायज और ना किसी दूसरे को मालिक बनाना जायज है। हां, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा हिस्से का वक्फ भी जायज था, मुशा चीज का वक्फ भी जायज था। तो उनके कौल के मुताबिक जब मुशा का वक्फ कर दिया और बाद में वो दूसरा शरीक कहता है कि मेरा हिस्सा अलग कर दो, और वहां फिर तकसीम करते हैं, तो फिर वहां पर तकसीम जायज है, और तकसीम के अंदर तमलीक भी लाजिम आएगी, लेकिन फिर भी ये जायज है भाई, फिर भी ये जायज है। देखिए भाई आगे मजीद वजाहत फरमाएंगे साहिब हिदाया। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इदा सहल वक्फ, और जब वक्फ सही हो जाए यानी जब वक्फ लाजिम हो जाए, लम यजुज बैउहू वला तमलीकुहू, तो फिर उस वक्फ को बेचना भी जायज नहीं, वला तमलीकुहू, और किसी दूसरे को उसका मालिक बनाना भी जायज नहीं है। याद रखो यहां सहा का माना करेंगे लजीमा के, इजा सहल वक्फ इजा लजीमल वक्फ, जब वक्फ लाजिम हो जाए। तवज्जो है, वजह यह कि इमाम साहब के नजदीक वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता। इधर देखिए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मजहब पीछे बयान हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ जब साबित भी हो जाए, वक्फ जब सही भी हो जाए, फिर भी लाजिम नहीं होता और वाकिफ की मिल्कियत से वो वक्फ नहीं निकलता। लिहाजा वाकिफ उसमें रुजू भी कर सकता है और उसको बेच भी सकता है और उसको हिबा भी कर सकता है। लेकिन जब वक्फ लाजिम हो जाए, इमाम साहब भी फरमाते हैं जब वक्फ लाजिम हो जाए, मसलन हाकिम ने उसका फैसला कर दिया, काजी ने उसका फैसला कर दिया, या वाकिफ ने वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दिया, तो इस सूरत में भी वक्फ लाजिम हो जाता है। तो इस सूरत के अंदर जब वक्फ लाजिम हो गया, अब उसमें रुजू भी जायज नहीं और उसको बेचना भी जायज नहीं। तवज्जो है। तो यहां आया वह इदा सहल वक्फ लम यजुज बेहू वला तमलीकू, और जब वक्फ सही हो जाए तो उसका बेचना भी जायज नहीं और किसी दूसरे को उसका मालिक बनाना भी जायज नहीं। इधर देखिए, साहिबैन के नजदीक तो जब वक्फ सही हो जाए तो वह लाजिम हो जाता है, और जब लाजिम होता है वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है, तो अब ना उसको बेचना जायज और ना किसी दूसरे को मालिक बनाना जायज। लेकिन इमाम साहब के नजदीक तो वक्फ के सही होने के साथ वक्फ का लाजिम होना जरूरी नहीं, वक्फ सही हो और लाजिम ना हो, यह हो सकता है। तवज्जो है। लेकिन यहां आ रहा है कि जब वक्फ सही हो जाए तो उसका बेचना भी नहीं जायज और दूसरे को मालिक बनाना भी नहीं जायज। तो यहां सहा का माना लजीमा के करने पड़ेंगे, क्योंकि इमाम साहब के नजदीक जब वक्फ लाजिम हो जाए तब उसका बेचना जायज नहीं होता, लाजिम होने से पहले उसका बेचना जायज है। तो लिहाजा जब यहां हम सहा का माना लाजिम के कर लेंगे तो अब तीनों अइमा के कौल के मुताबिक बात सही हो जाएगी कि वक्त जब लाजिम हो जाए तो उसका बेचना जायज नहीं हमारे तीनों अइमा के नजदीक। तो यहां सहा का क्या माना करना पड़ेगा? लाजिमा के। भाई काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इदा सहल वक्फ, और जब वक्फ लाजिम हो जाए लम यजुज बेहू वला तमलीकू, तो न तो उसको बेचना जायज है और न दूसरे को उसका मालिक बनाना। इल्ला अयकू न मुशा अन इंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, मगर यह कि वह वक्फ मुशा हो यानी फैला हुआ हो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नजदीक। फया तुलुबा शरीक उल किस्मता, तो शरीक ने तकसीम का मुतालबा कर दिया। जैद और अमर ने मिलकर जमीन खरीदी है और जैद ने अपना हिस्सा वक्फ कर दिया, जैद का हिस्सा मुशा है, फैला हुआ है, जैद ने अपना हिस्सा वक्फ कर दिया। अब अमर ने मुतालबा किया कि मेरा हिस्सा अलग कर दो, अब मेरा हिस्सा अलग कर दो। तो फिर इस सूरत में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्ला फरमाते हैं अब मुकासमा जायज है, अब मुकासमा जायज है। मुकासमा का माना होता है किसी से अपना हिस्सा लेना, किसी से अपना हिस्सा लेना, इसको कहते हैं मुकासमा। दो आदमियों में एक जमीन मुश्तरका है, वो उसको आपस में तकसीम करते हैं, तो इसको कहते हैं मुकासमा कि हर एक ने अपना हिस्सा अलग कर लिया जी। तो कहते हैं इल्ला अन यकूना मुशाअन इंदा अबी यूसुफ रहमुल्ला, मगर यह कि वक्फ जो है मुशा हो इमाम अबू यूसुफ रहमुल्ला के नजदीक। फयतलुबा शरीक उल किस्मता, तो उस वाकिफ के शरीक ने तकसीम का मुतालबा किया। फयसिहु मुकासमतुहु, तो फिर इस वक्फ का मुकासमा सही है, फिर इस वक्फ का मुकासमा सही है। अम्मम तिनाउ तमली की फलीमा बैयन्ना व अम्मा जवाजुल किस्मती फली अन्नहा तमीजुन व इफराजुन। कहते हैं अम्मम तिनाउ तमली की, बाकी तमलीक का मुमतने होना कि वक्फ का मालिक किसी दूसरे को नहीं बनाया जा सकता, वो इस वजह से है जो हमने माकबल में बयान कर दिया। वो जो हदीस पीछे गुजरी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया तसद्दक भी असलिहा ला युबाउ वला यूरसु वला यूहबू, कि इसकी असल को सदका कर दो कि ना इसको बेचा जा सके, ना इसमें वरासत जारी हो और ना इसको हिबा किया जा सके। तो इस हदीस से पता चला कि वक्फ का मालिक किसी दूसरे को नहीं बनाया जा सकता, न उसको बेचा जा सकता है, न हिबा किया जा सकता है और न उसमें वरासत जारी होती है। तो कहते हैं अम ममतना और तमली की फलीमा बैयन्ना, तो दूसरे को मालिक बनाने का मुमतने होना ये उस वजह से है जो हमने बयान कर दिया। वह अम्मा जवाजुल किस्मती, और बाकी तकसीम का जायज होना, बतलाया कि अगर एक शरीक तकसीम का मुतालबा करे तो फिर मुकासमा जायज है। अब उसकी वजह बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह अम्मा जवाजुल किस्मती, और बाकी तकसीम का जायज होना। फली अन्नहा तमीज व इफराज, इसलिए क्योंकि यह जुदा करना है। तमीज और इफराज का एक ही माना है, तमीज का माना जुदा करना, इफराज का माना भी जुदा करना, अपना हिस्सा अलग करना। भाई याद रखो, जब भी एक चीज दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका हो और वो उसको आपस में तकसीम करें, तो वहां इफराज भी होता है और मुबादला भी। افراز بھی اور مبادلہ بھی. افراز یعنی اپنا حصہ الگ کرنا اور مبادلہ یعنی کچھ حصے کا آپس میں تبادلہ کر لینا. مثلا زید اور عمر نے گندم خرید لی, پیسے ملائے اور ملا کر گندم خرید لی. اب یہ گندم دونوں کے درمیان مشترکہ ہے, گندم کا کوئی ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ صرف زید کا ہے یا یہ صرف عمر کا ہے. نہیں بھائی, گندم کے ہر ہر دانے میں دونوں شریک ہیں, گندم کے ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں. پھر یہ دونوں اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں, آدھی گندم زید نے لے لی اور آدھی گندم عمر نے لے لی. تو دیکھو زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے یہ ساری زید کی نہیں تھی, کچھ حصہ تو زید کا تھا اور کچھ حصہ اس میں عمر کا تھا. اسی طرح عمر کے حصے میں جو گندم آئی ہے وہ بھی ساری عمر کی نہیں تھی, کچھ حصہ اس میں عمر کا تھا اور کچھ حصہ اس میں زید کا تھا. توجہ ہے؟ تو لہذا زید اور عمر نے گندم آپس میں تقسیم کر لی, تو زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے اس میں سے کچھ حصہ تو تھا ہی زید کا, تو اس کو کہیں گے افراز. زید نے اپنا حصہ الگ کر لیا, زید نے اپنا حصہ عمر سے الگ کر لیا, تو یہ ہے افراز. اور یہ جو زید کی گندم ہے اس میں سے کچھ حصہ عمر کا تھا لیکن زید نے عمر کا حصہ لے لیا اور بدلے میں عمر کی گندم کے اندر جو زید کا حصہ بنتا تھا وہ اس نے عمر کو دے دیا. زید کی گندم میں کچھ حصہ عمر کا تھا اور عمر کی گندم میں کچھ حصہ زید کا تھا, تو اس کا دونوں نے آپس میں تبادلہ کر لیا. زید کی گندم میں جو عمر کا حصہ بنتا تھا وہ زید نے لے لیا اور بدلے میں عمر کی گندم میں جو زید کا حصہ بنتا تھا وہ زید نے عمر کو دے دیا. توجہ ہے؟ تو جو گندم زید کے حصے میں آئی ہے اس میں کچھ حصہ تو تھا ہی زید کا, تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہاں تقسیم کے اندر افراز پایا گیا, زید نے اپنا حصہ الگ کیا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے یہ جو گندم زید کے حصے میں آئی ہے اس میں کچھ حصہ عمر کا تھا, تو اس اعتبار سے دیکھیں تو مبادلہ بھی پایا گیا ہے. تو جب بھی ایک مشترکہ چیز کو دو آدمی آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے. البتہ یاد رکھنا کہ یہ جو چیز جس کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا اگر یہ مثلیات میں سے ہے تو یہاں پر افراز غالب ہے, یہاں پر افراز غالب ہے. مثلیات بھائی مکیلات, موزونات اور معدودات متقاربہ. مکیلات وہ چیزیں جن کو خاص پیمانوں میں ماپ کر بیچا جاتا ہے, جیسے دودھ کو ایک خاص برتن میں ماپ کر بیچتے ہیں, جیسے قدیم زمانے کے اندر گندم کو ایک خاص پیمانے کے اندر ایک برتن کے اندر ماپ کر بیچا جاتا تھا, تو یہ ہے مکیلات بھائی. اور کچھ چیزیں موزونات ہیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے, اور کچھ چیزیں معدودات ہیں جن کو گن کر بیچا جاتا ہے. جیسے آپ بازار سے انڈے خریدتے ہیں تو گن کر خریدتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں معدودات متقاربہ, اور یہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتی ہیں. جیسے دو انڈے ہیں دونوں بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے, کچھ نہ کچھ فرق ہوگا لیکن اس فرق کو شمار ہی نہیں کرتے, دونوں کو ایک ہی جیسا سمجھا جاتا ہے, تو ان کو معدودات متقاربہ کہتے ہیں. یعنی ایسی گنی جانے والی چیزیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. تو یہ جو مکیلات ہیں, موزونات ہیں اور معدودات متقاربہ ہیں یہ مثلیات کہلاتی ہیں کیونکہ ان کا مثل بازار سے مل جاتا ہے, جبکہ ان کے علاوہ اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ذوات القیم کہلاتی ہیں, یعنی وہ قیمت والی ہیں, ان کا مثل بازار سے نہیں ملتا بھائی. لہذا زید اور عمر نے گندم خریدی اور گندم مثلیات میں سے ہے, اس کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا. اور جب بھی ایک چیز کو دو ساتھی آپس میں تقسیم کریں وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی. تو یہاں جب گندم دونوں نے تقسیم کی تو افراز بھی پایا گیا کہ زید نے اپنا کچھ حصہ الگ کیا ہے, اور مبادلہ بھی پایا گیا کہ زید نے عمر کا کچھ حصہ لے کر بدلے میں اپنا کچھ حصہ عمر کو دے دیا ہے. توجہ ہے؟ تو جب بھی تقسیم کی جائے وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی, لیکن اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو وہاں افراز کو غالب قرار دیا جاتا ہے. وہاں افراز کو غالب قرار دیا جاتا ہے. یوں سمجھا جائے گا یہ جو زید اور عمر نے گندم تقسیم کی ہے, یوں سمجھیں گے کہ یہاں صرف افراز ہے. زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے یہ ساری تھی ہی زید کی, زید نے اپنا حصہ الگ کر لیا. عمر کے حصے میں جو گندم آئی ہے وہ ساری گندم تھی ہی عمر کی, عمر نے اپنا حصہ الگ کر دیا. یہاں مبادلہ ہے ہی نہیں, یہاں افراز ہی افراز ہے. تو مثلیات کے اندر تقسیم ہو تو وہاں افراز کو غالب قرار دیا جاتا ہے, اسے افراز سمجھا جاتا ہے, اگرچہ وہاں مبادلہ بھی ہوتا ہے. جبکہ ذوات القیم چیزوں کے اندر جب تقسیم کی جائے تو یاد رکھو وہاں مبادلہ غالب ہے, वहां मुबादला गालिब है। जैसे जैद और अमर दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीदी है, तो अब देखो जमीन के अंदर जैद और दामर दोनों का हिस्सा है, और अभी दोनों ने तकसीम नहीं किया, तो जैद का हिस्सा भी पूरी जमीन में फैला हुआ है, अमर का हिस्सा भी पूरी जमीन में फैला हुआ है, और फिर बाद में दोनों आपस में तकसीम करते हैं। तो आधी जमीन जैद ने ले ली और आधी अमर ने ले ली। जो जमीन जैद के हिस्से में आई है, कुछ हिस्सा तो उसमें था ही जैद का, और कुछ हिस्सा अमर का भी था। और इसी तरह अमर के जो हिस्से में जो जमीन आई है, उसमें कुछ हिस्सा था ही अमर का और कुछ हिस्सा जैद का था। तो जैद के हिस्से में जो जमीन आई, उसमें जैद का कुछ अपना हिस्सा था और कुछ हिस्सा अमर का था, और वो अमर का हिस्सा जैद ने ले लिया, और बदले में अमर की जमीन में जो जैद का हिस्सा आता था वो उसने अमर को दे दिया। तो यहां जमीन की जब तकसीम की, तो यहां भी इफराज भी है और मुबादला भी है, लेकिन जमीन ज़वातुल क़ियम में से है, और ज़वातुल क़ियम के अंदर जो है मुबादला गालिब होता है। तो यहां यूं समझेंगे, दोनों ने आपस में मुबादला किया है। जो जमीन जैद के हिस्से में आई है, वो कुछ तो थी ही जैद की, और कुछ का उसने अमर के साथ मुबादला कर लिया है। बात समझ में आ गए। तो मिसलियात में तकसीम हो तो उसको इफराज करार दिया जाता है, वहां यूं समझते हैं मुबादला हुआ ही नहीं, और ज़वातुल क़ियम के अंदर तकसीम हो तो उसमें मुबादले को गालिब करार दिया जाता है। बात समझ में आ गई। आप इधर देखिए भाई, मसला चल रहा है वक्फ का। जैद और अमर में एक जमीन मुश्तरका थी, जैद और अमर दोनों का हिस्सा पूरी जमीन में फैला हुआ है, जैद ने अपना हिस्सा वक्फ कर दिया, जैद ने अपना हिस्सा वक्फ कर दिया। अब बाद में अमर मुतालबा करता है कि मेरा हिस्सा अलग कर दो, मेरा हिस्सा अलग कर दो। तो दोनों जब जमीन को तकसीम करेंगे, और जमीन किस में से है, ज़वातुल क़ियम में से, और ज़वातुल क़ियम में जब तकसीम हो तो वहां मुबादला गालिब होता है। तो यहां गोया मुबादला हुआ, गोया जैद ने अपनी कुछ जमीन देकर अमर की कुछ जमीन ले ली, तो ये मुबादला हुआ। और ये तो मुबादला वक्फ के अंदर लाजिम आ रहा है, मुबादला वक्फ के अंदर। जैद ने तो अपना सारा हिस्सा वक्फ कर दिया था, लेकिन जैद ने अमर का कुछ हिस्सा ले लिया और अपना हिस्सा जो वक्फ था वो अमर को दे दिया। मालूम हुआ वक्फ हिस्से का मालिक अमर को बना दिया, और वक्फ हिस्से का मालिक तो किसी दूसरे को नहीं बनाया जा सकता। तवज्जो है। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक जब कोई मुशा को वक्फ कर दे और फिर वहां तकसीम की जाए तो वहां मुबादला लाजिम आता है, लेकिन वहां उसको मुबादला नहीं समझेंगे, इफराज समझेंगे वक्फ की वजह से। वैसे तो इसको मुबादला समझा जाता है क्योंकि जमीन ज़वातुल क़ियम में से है, लेकिन यह चूंकि वक्फ का मसला है लिहाजा यहां इसको इफराज करार दिया जाएगा। यूं समझेंगे जैद ने जो जमीन अलग की है यही जमीन वक्फ थी, यहां मुबादला है ही नहीं, और जो जमीन अमर के हिस्से में आई है वह अमर ही का हिस्सा था, यहां मुबादला हुआ ही नहीं। जब मुबादला ही नहीं हुआ तो यह तकसीम जायज है, वरना अगर मुबादला को देखें फिर तो दूसरे को वक्फ का मालिक बनाना लाजिम आ रहा है, और वो तो जायज नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये माना है, कहते हैं वह अम्मा जवाजुल किस्मती, और बाकी तकसीम का जायज होना, फली अन्नहा तमीजुन व इफराजुन, इसलिए क्योंकि ये जुदा करना है और अपना हिस्सा अलग करना है। गायतुल अमरी, गायत अमर यह है, इंतहाई अमर यह है, यानी हासिल कलाम यह है, हासिल कलाम ये कहते हैं गायतुल अमरी, यानी हासिल कलाम यह है। यहां से साहिब हिदायत बतलाएंगे कि अगरचे यह जमीन का मामला है, जमीन ज़वातुल क़ियम में से है, और यहां जब तकसीम की जाएगी तो यहां मुबादला आएगा, लेकिन उसको मुबादला समझेंगे नहीं बल्कि उसको भी इफराज करार देंगे। अब यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं गायतुल अमरी, और इस मामले की इंतहा यह है, यानी हासिल कलाम यह है कि अन्नल गालिबा फी गैरिल मकील वल मौजूनी, कि गैर मकील और गैर मौजून के अंदर गालिब जो है मानल मुबादला थी, वो मुबादला का माना होता है। मकीलात और मौजूनात में तो इफराज गालिब होता है, तवज्जो है। मिसलियात किसे कहते हैं, मकीलात मौजूनात और मादूदात मुतकारिबा, और मिसलियात के अंदर तकसीम के अंदर इफराज गालिब होता है, और गैर मकील और गैर मौजून चीज में मुबादला गालिब होता है, लेकिन यहां वक्फ की वजह से मुबादला नहीं करार देंगे इसे, बल्कि इफराज करार देंगे। तो कहते हैं गायतुल अम्र हासिल कलाम यह है कि अन्नल गालिब फी गैर मकील वल मौजूनी कि गैर मकील और गैर मौजून के अंदर गालिब जो होता है मानल मुबादलती वो मुबादले का माना होता है इल्ला अन्ना फिल वक्फ जाल नल गालिबा मगर यह कि वक्फ के अंदर हमने गालिब करार दिया मानल इफराजी इफराज के माना को वक्फ के अंदर हमने इफराज के माना को गालिब करार दिया नजरन लिल वक्फी वक्फ की रियायत रखते हुए वक्फ की रियायत रखते हुए फलम यकुम बैउ व तमलीकन लिहाजा ये बै और तमलीक नहीं है ये बै और तमलीक नहीं है ये बै भी नहीं और तमलीक भी नहीं। भाई मैंने आपको बताया ज़वातुल क़ियम चीज के अंदर जब तकसीम की जाएगी तो वहां मुबादला गालिब है वहां मुबादला गालिब है। जब जैद और अमर में एक मुश्तरका जमीन हो और वो उसको आपस में तकसीम करेंगे तो जैद ने अमर की कुछ जमीन ले ली और बदले में अपनी कुछ जमीन अमर को दे दी तो देखो मुबादला पाया गया। और ये मुबादलतुल माल बिल माल है जैद की तरफ से भी जमीन है और अमर की तरफ से भी बदले में जमीन है और जमीन माल है और मुबादलतुल माल बिल माल को बै कहते हैं। तो मालूम हुआ ज़वातुल क़ियम के अंदर जब भी तकसीम होगी वहां मुबादला होगा यानी यूं कहो वहां बै होगी और ये यूं कहो वहां तमलीक होगी कि दूसरे को मालिक बनाया जा रहा है। तो साहिब हिदायत फरमा रहे हैं कि ज़वातुल क़ियम में ऐसा ही होता है लेकिन यहां पर हमने इसको वक्त की वजह से इफराज करार दे दिया। जब इफराज करार दे दिया तो ना यहां बै है और ना यहां तमलीक है। भाई तो कहते हैं इल्ला अन्ना फिल वक्फ जअलना अल गालिब मअना अल इफराजी मगर यह कि हमने वक्फ के अंदर जो है इफराज के माना को गालिब करार दे दिया नजरन लिल वक्फ वक्फ की रियायत करते हुए फलम यकुम बैउ व तमलीकन तो लिहाजा ये जो तकसीम है ये बै और तमलीक नहीं है। जब ये बै और तमलीक नहीं है तो ये जायज है। भाई आगे देखिए सुम्मा इन वक़फ़ा नसीबहू मिन अक़ारिम मुश्तरकिन फ़हुवल्लज़ी युक़ासिमु शरीकहू। अब यहां से मुकासमा बयान कर रहे हैं। भाई मैंने आपको बतलाया मुकासमा कहते हैं किसी से अपना हिस्सा लेना किसी से अपना हिस्सा लेना इसको कहते हैं मुकासमा। और याद रखो मुकासमे के लिए एक मुकासिम चाहिए एक मुकासम। मुकासिम वो शख्स जो अपना हिस्सा ले रहा है और मुकासम जिससे वो अपना हिस्सा ले रहा है। तो मुकासमे के लिए हमेशा दो अफराद चाहिए एक वो फर्द जो अपना हिस्सा ले रहा है और दूसरा वो फर्द जिससे वो अपना हिस्सा ले रहा है। तो मुकासमे में हमेशा दो अफराद चाहिए एक ही फर्द मुकासमा नहीं कर सकता। भाई एक ही फर्द मुकासमा नहीं कर सकता या यूं कहो कि मुकासमे में दो अफराद का होना जरूरी है। वजह यह कि एक वो है जो अपने हिस्से का मुतालबा करेगा तो वो होगा मुतालिब और जिससे मुतालबा करेगा वो होगा मुतालब और मुतालिब और मुतालब एक ही शख्स नहीं हो सकता ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। मसलन जैद कहता है मैंने मुतालबा किया आपने पूछा किससे मुतालबा किया कहते मैंने अपने आप से ही मुतालबा किया। नहीं भाई ये नहीं हो सकता वरना तो इसमें मुतालिब और मुतालब एक ही शख्स हो जाएगा। मुतालिब यानी मुतालबा करने वाला और होता है और जिससे मुतालबा किया जाए वो और होता है। इसी तरह मुकासिम और मुकासम भी अलग अलग होते हैं वो शख्स जो अपना हिस्सा अलग करने वाला है वो और है और जिससे अपना हिस्सा अलग कर रहा है वो और होगा। भाई लिहाजा जैद और अमर के दरमियान मुश्तरका जमीन थी। इधर देखिए जैद ने अपना हिस्सा जो मुशा था उसको वक्फ कर दिया। अब बाद में अमर ने कहा कि मेरे साथ मुकासमा करो मेरा हिस्सा अलग कर दो तो अब इसके साथ मुकासमा कौन करेगा कहते हैं भाई जैद खुद मुकासमा करेगा क्योंकि इस वक्त की विलायत जैद को हासिल है। इस वक्त की विलायत जैद को हासिल है। भाई तवज्जो है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक तो मुशा का वक्फ ही जायज नहीं है वरना उनके नजदीक तो मुतवल्ली को विलायत हासिल होती मुतवल्ली के कब्जे में होती लेकिन ये तो मुशा है इसमें तो उनके नजदीक वक्फ जायज ही नहीं। तो यहां पर मुशा का वक्फ का मसला है तो इस मुशा के अंदर जो मुकासमे की विलायत है वो वाकिफ ही को हासिल है लिहाजा वाकिफ जो है उस दूसरे शरीक के साथ मुकासमा कर लेगा तो एक मुकासिम बन जाएगा और दूसरा मुकासम और इस तरह दोनों हिस्से अलग कर लेंगे। देखिए भाई तो कहते हैं सुम इन वकफा नसीबहू मिन अकारिम मुश्तरकिन और फिर अगर किसी ने मुश्तरक जका जायदाद में से अपना हिस्सा वक्फ कर दिया, फहुअल्लदी युकासिमु शरीकहु, तो यही वाकिफ जो है यही अपने शरीक के साथ मुकासमा करेगा। लिअन्न अल-विलायत इलल वाकिफी, इसलिए क्योंकि इस मुकासमे की जो विलायत है वो वक्फ करने वाले को है, इसकी विलायत वक्फ करने वाले को हासिल है। लिअन्न अल-विलायत इलल वाकिफी, इसलिए क्योंकि इस मुकासमे की जो विलायत है वो वक्फ करने वाले को हासिल है। वह बादल मौत इला वसी ही, और इस वाकिफ की मौत के बाद इसके जो वसी होगा, जो निगरान होगा, उसको मुकासमे की विलायत हासिल होगी। सूरत समझ में आ गई, लिहाजा ये खुद ही मुकासमा करेगा। व इन व कफा निस्फा आकार इन खालिसिन लहू, अब दूसरी सूरत है भाई, जैद का एक बाग है, जैद ने उस बाग में से निसफ हिस्सा वक्फ कर दिया, और जो वक्फ किया है वो मुशा है, उसकी तायीन नहीं की कि बाग का कौन सा हिस्सा मैं वक्फ कर रहा हूं, बल्कि मुतलकन कहा इस बाग का निसफ मैंने वक्फ कर दिया। तो अब ये सारा बाग जैद का था, इसमें से निसफ वक्फ हो गया, अब जैद इसमें मुकासमा करना चाहता है, अपना हिस्सा वक्फ से अलग करना चाहता है, तो जैद अकेला ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुकासमे के लिए दो अफराद चाहिए। तो फिर अब कैसे मुकासमा करेंगे, वक्फ करने वाला भी जैद है और बाकी का हिस्सा भी जैद का है, तो कहते हैं इस सूरत में फिर काजी जो है वह मुकासमा करेगा इसके साथ, काजी इसके साथ मुकासमा कर लेगा। बात समझ में आ गई, ये एक सूरत है, तो जब काजी भी आ जाएगा तो अब भी दो अफराद हो गए। यह दूसरी सूरत यह है कि जैद ने बाग के अंदर निसफ मुशा हिस्सा वक्फ किया है, बाकी का निसफ बाग जिसका जैद मालिक है, जैद उस निसफ को किसी अपने साथी के हाथ बेच दे, अपने साथी के हाथ बेच दे, निसफ हिस्सा जैद ने वक्फ किया, जैद हुआ वाकिफ, और दूसरे निसफ का मालिक वो उस जैद का साथी बन गया, तो अब दो अफराद हो गए, ये आपस में क्या कर लेंगे, मुकासमा कर लेंगे। जब मुकासमा हो गया, अब निसफ वक्फ अलहदा हो गया और दूसरे साथी का निसफ अलहदा हो गया, तो जैद उससे दोबारा अब उसका हिस्सा खरीद लेगा। अब देखो मुकासमा भी हो गया और वह निसफ बाकी का जैद के पास भी आ गया। सूरत समझ में आ गई, तो कहते हैं वह इन वक्फा निसफा आकार इन खालिसिन लहू, और अगर किसी ने ऐसी निसफ जायदाद वक्फ कर दी खालिसिन लहू, जो खालिस उसी वक्फ करने वाले की थी, यानी सारी आकार उसी की थी, उसने उसमें से निसफ जो है वक्फ कर दी, फल्लदी युकासिमुहुल काजी, तो वो शख्स जो इसके साथ मुकासमा करेगा वो काजी है। औ यबीउ, अब दूसरी सूरत बतला रहे हैं, औ यबीउ नसीबहुल बाकिया मिर रजुलीन, या ये वाकिफ जो है अपना बाकी का हिस्सा किसी आदमी के हाथ बेच देगा, सुम्म युकासिमुहुल मुश्तरी, फिर वो मुश्तरी इसके साथ मुकासमा कर लेगा, सुम्म यश्तरी जालिका मिन्हू, फिर ये वाकिफ उससे वो बाकी हिस्सा खरीद लेगा, खरीद लेगा। भाई क्यों ये काजी का बीच में आना या दूसरे आदमी के हाथ बेचना क्यों जरूरी है, कहते हैं लिअन्न अल-वाहिद ला यजूज़ु अन यकूना मुकासिमन व मुकासमन, कहते हैं इसलिए क्योंकि एक आदमी जो है जायज नहीं है कि वही मुकासिम भी बन जाए और मुकासम भी बन जाए। वलौ कान फिल किस्मति फज़लु दराहिमा, अब दूसरी सूरत है भाई, बाज औकात जमीन ऐसी है या वो बाग ऐसा है कि उसके दो हिस्से बना दिए, लेकिन एक हिस्से की कीमत कुछ ज्यादा बनती है और दूसरे हिस्से की कीमत कुछ कम बनती है, पूरी बराबर बराबर तकसीम मुमकिन ही नहीं थी, तो फिर इस तरह कर दिया जाता है कि एक हिस्से की कीमत ज्यादा है, दूसरे हिस्से की कीमत कम है, तो जिसके हिस्से की कीमत ज्यादा है वो कुछ दिरहम और दीनार दूसरे को दे देता है, तो फिर इस तरह बराबरी हो जाती है। मसलन जैद के हिस्से में जो जमीन आई वो 600 दिरहम की थी, और अमर के हिस्से में जो जमीन आई वो 400 दिरहम की है, तो जैद जो है अमर को 100 दिरहम भी दे देगा, तो अब अमर के पास 400 दिरहम की जमीन आ गई और 100 दिरहम भी आ गए, तो ये 500 दिरहम इसका हिस्सा हो गया, और जैद के हिस्से में 600 की जमीन थी लेकिन 100 दिरहम इसने अमर को दे दिए, तो इसका हिस्सा भी 500 दिरहम का हो गया। भाई बात समझ में आ गई, तो अब आपको बतलाएंगे कि अगर मुकासमे में दिरहमों को शामिल करने की जरूरत पड़ी, मैंने बताया बाज़ औक़ात दिरहमों को शामिल करना पड़ता है, उसके बगैर तकसीम बराबर हो ही नहीं सकती। तो अगर मुकासमे के अंदर दिरहम और दीनार को शामिल करने की जरूरत पेश आ गई तो कहते हैं इस सूरत में अगर ये दिरहम, इधर देखिए, ये दिरहम और दीनार अगर वाकिफ अदा करता है फिर तो जायज है, और अगर ये दिरहम और दीनार वाकिफ लेता है फिर जायज नहीं। भाई क्या वजह है? कहते हैं वजह यह कि दिरहम और दीनार अगर वाकिफ दे रहा है, वाकिफ दे रहा है, मालूम हुआ अमर से कुछ जायद जमीन ले रहा है तो वक्फ बढ़ जाएगा, इसमें तो फायदा है भाई। लेकिन अगर वाकिफ को दिरहम लेने पड़ते हैं तकसीम के अंदर तो इसका मतलब है वाकिफ दिरहम ले रहा है और कुछ वक्फ जमीन अमर को दे रहा है, कुछ वक्फ जमीन का मालिक अमर को बना रहा है और यह तो जायज नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ वाकिफ का दिरहम लेना तो जायज है, दिरहम देना जायज नहीं। तो कहते हैं वलौ कान फिल किस्मति फजलु दराहिमा, तो कहते हैं अगर तकसीम के अंदर जायद दिरहम थे तो इन अतल वाकिफा, अगर वाकिफ को वो दिरहम दिए, वाकिफा देखो ये मफूल है, अगर उस दूसरे शरीक ने वाकिफ को दिरहम दिए तो कहते हैं वलौ कान फिल किस्मति फजलु दराहिमा, और अगर तकसीम के अंदर कुछ जायद दिरहम थे तो इन अतल वाकिफा, तो वो दिरहम अगर उसने वाकिफ को दिए, ला यजूजू, तो ये जायज नहीं, लिम्तिनाइ बैइल वक्फी, इसलिए क्योंकि वक्फ का बेचना मुमतनेअ है। वह इन अतल वाकिफु, और अगर वाकिफ ने वो दिरहम दिए जाजा, तो फिर ये जायज है। वह यकून बिकदरी दिरहमी शिराअन, और दिरहमों के बकदर शिरा हो जाएगी कि वाकिफ ने कुछ मजीद जमीन अमर से खरीद कर वक्फ में शामिल कर दी। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।